नय राधा माधवाय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चाही यमुना तीरावन चाही जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी गोपी जना वाला भाजय गिरवर हरि यशोदानंदन गज जनरंजन यशोदानंदन गज जनरंजन यमुना तीरावन करी यमुना तीरावन करी
तो पिछली बार हम श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहे थे और जहाँ तक मुझे याद है हम लोग करीब 11 गुणों का वर्णन कर रहे थे कर चुके थे पिछली बार सुपंडित तक किया था हमने। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 12वां गुण बताया गया है अत्यधिक बुद्धिमान। फिर क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, जिस मनुष्य की स्मरण शक्ति तीक्ष्ण एवं विवेक शक्ति उत्तम होती है वह बुद्धिमान कहलाता है। जहां तक कृष्ण की स्मरण शक्ति का संबंध है यह कहा जाता है कि जब वह अवंतीपुर में सांदीपनी मुनि की पाठशाला में पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपनी तीक्ष्ण स्मरण शक्ति का परिचय ऐसे दिया जिससे वह अपने गुरु से किसी भी विषय में एक ही बार पाठ पढ़ लेने से तुरंत पारंगत बन जाते थे। तो भगवान कृष्ण और बलराम जी ये दोनों ही गए थे सांदीपनी मुनि के आश्रम से वहाँ पर विद्या ग्रहण करने के लिए। पिछली बार हम लोग उज्जैन गए थे तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा सांदीपनी मुनि का आश्रम जहाँ पर कृष्ण बलराम 64 दिनों में उन्होंने 64 प्रकार की कलाओं पर शिक्षा ग्रहण की। 64 दिनों में ही दक्षता प्राप्त कर ली सांदीपनी मुनि से। तो उसी के बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है। वस्तुतः वह सांदीपनी मुनि की पाठशाला में लोगों को ये दिखलाने गए कि कोई कितना ही महान या दक्ष क्यों ना हो उसे सामान्य शिक्षा के लिए उच्च अधिकारियों के पास जाना चाहिए। कोई कितना ही महान क्यों ना हो उसे गुरु स्वीकार करना चाहिए। यानी कि बड़े बड़े विद्वान दार्शनिक बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े उच्च कोटि के संस्कृत के भी विद्यार्थी जो हजारों श्लोक जानते हैं उनके लिए भी यह सुझाव दिया गया है कि वो किसके पास जाएं, उच्च अधिकारियों के पास जाएं, यानी कि वैष्णवों के पास जाएं और आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करें। है ना? और जैसे कि हम आज दोपहर में ही बता रहे थे कि यही है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का तरीका एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजऋषियों भी। तो जिस तरह से राजऋषियों ने प्राप्त किया दिव्य ज्ञान ऐसे ही प्राप्त किया जाता है गुरु परंपरा के माध्यम से। और इस तरह से देखते हैं कि स्वयं भगवान भी जब आते हैं तो वो भी गुरु स्वीकार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को भी हमने देखा कि किस तरह वो नवद्वीप में एक बहुत बड़े पंडित के रूप में विख्यात है ना, जैसे कि पिछली बार भी हमने बताया था कि कैसे केशव काश्मीरी पंडित को उन्होंने हराया। लेकिन तब तो उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी, लेकिन दीक्षा के बाद जब श्रीपाद ईश्वरपुरी से मिले थे गया में और वहाँ जाकर उन्होंने सबसे पहले भगवान विष्णु के चरण के चिन्हों का दर्शन किया था तो पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावेश कीर्तन किया नृत्य किया और उसके उपरांत उनको दर्शन प्राप्त हुआ श्रीपाद ईश्वरपुरी का। और श्रीपाद ईश्वरपुरी का दर्शन करते ही उन्होंने कहा, वो आए थे वास्तव में श्राद्ध करने के लिए, अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने कहा उनको देखते ही कि आपके दर्शन करने मात्र से तो 1 करोड़ पूर्वजों का उद्धार हो गया है केवल दर्शन करने मात्र से। और बाद में फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद ईश्वरपुरी के लिए बहुत सुंदर प्रसाद की व्यवस्था की और उनको प्रसाद परोसा और उनकी सेवा की, माल्यार्पण किया, चंदन का लेप लगाया। और बाद में उसके बाद उसके उपरांत उन्होंने प्रार्थना की, आग्रह किया श्रीपाद ईश्वरपुरी से कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। और श्रीपाद ईश्वरपुरी क्योंकि वो पहले से बहुत बड़े भक्त थे, महान भक्त थे, उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा कि आप तो स्वयं भगवान हैं, आपको कैसे मैं दीक्षा दे सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपसे ही दीक्षा ग्रहण करके रहूँगा। इस तरह से उन्होंने जब प्रार्थना की बार बार, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये मेरी सेवा है तो सेवा समझ कर मैं आपको दीक्षा दूंगा। तो उसके बाद श्रीपाद ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दिया। और उसके बाद जब वो नवद्वीप पहुंचे तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन बंद कर दिया। एक बार तो ऐसा भी हुआ था इससे पहले कि चैतन्य महाप्रभु जब सबसे पहली बार श्रीपाद ईश्वरपुरी से मिले थे नवद्वीप में, तो श्रीपाद ईश्वरपुरी ने कहा, चैतन्य महाप्रभु को देखते ही बोला कि मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो, मैं चाहता हूँ कि मैंने एक जो ग्रंथ लिखा है उसका तुम संशोधन करो, हाँ उसका संपादन करो। तो उन्होंने कहा कि आपके ग्रंथ में के लेख में जो दोष देखेगा वो स्वयं ही दोषी है, आपका लिखा हुआ कोई भी ग्रंथ कैसे गलत हो सकता है। उसने नहीं नहीं मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर विचार करें और इसका संपादन करें। इस ग्रंथ का नाम है लिखा है कृष्ण लीलामृत। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, अगर ये सेवा है तो फिर मैं इसको करता हूँ। फिर अगले दिन जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि आपने एक जगह पर एक शब्द लिखा है आत्मनेपदी, लेकिन इसके जगह परस्मयपदी होना चाहिए था। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी ने कहा ठीक है, अगर ये बात है तो मैं जाकर और देखता हूँ इसके बारे में और जाके विचार करता हूँ। तो अगले दिन जब दोबारा मिले तो श्रीपाद ईश्वरपुरी ने कहा कि मैंने अच्छी तरह से इसको पढ़ा और देखा, मेरे ख्याल से मैंने ठीक ही लिखा था, वहां पर आत्मनेपदी शब्द ही होना चाहिए, परस्मयपदी नहीं होना चाहिए। तो पहली बार चैतन्य महाप्रभु जो पंडित के रूप में विख्यात थे उन्होंने हार स्वीकार किया, इससे पहले उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं किया। इसी तरह से हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने कभी हार स्वीकार नहीं किया था। जब वो कॉलेज में थे हमेशा लीडर थे प्रभुपाद। प्रभुपाद कहते मैं जब भी जहां भी था हमेशा लीडर ही रहा हूं, विद्यार्थियों के बीच में भी, स्टूडेंट्स के बीच में भी। तो प्रभुपाद कभी हार नहीं मानते थे, प्रभुपाद हमेशा डिबेट्स में विजय रहते थे, है ना। जैसे कि प्रभुपाद को आप जानते हैं प्रीचिंग कैसे करते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि जब सबसे पहले पहली बार मैं अपने गुरु महाराज को मिला और उनके शब्दों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि पहली बार मैं किसी से हार गया हूं, मैंने हार स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमें कौन सुनेगा, अभी तो हमारा ये देश अंग्रेज सरकार के अधीन है, हम प्रचार भी करना चाहेंगे तो कौन सुनेगा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर ने कहा कि ये प्रचार जो है कृष्ण भावना का किसी समय काल और परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है और इसका प्रचार करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राजनेता बदल जाएंगे लेकिन राजनीति नहीं बदलेगी, राजनीति तो चलती रहेगी, तो कब तक इंतजार करोगे इसका। तो इस तरह से प्रभुपाद ने पहली बार सुना तो वो हैरान हो गए, उनको लगा कि चैतन्य महापुरुष का संदेश जो है बिल्कुल सही व्यक्ति के हाथ में है। ऐसा उन्होंने अपने मित्र को कहा, नरेंद्र नाथ मलिक जो उनको जबरदस्ती खींच के ले गए थे, प्रभुपाद जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा बहुत देखे मैंने साधु पंडित पर, बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, सब ढोंगी है। उन्होंने कहा ये ऐसे व्यक्ति नहीं है, आप चलो चल के एक बार आप मिलो तो सही उनसे, ये बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत बड़े भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के। तो प्रभुपाद ने कहा सबसे पहले मैंने हार स्वीकार किया और अपने हृदय से मैंने उसी दिन उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, ऐसा प्रभुपाद ने कहा। प्रभुपाद लीलामृत में भी आता है। तो इसी तरह यहाँ देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी उन्होंने हार स्वीकार किया था अपने गुरु से और उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। और ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान बताया गया है, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो एक ब्रह्माणी गुरु की शरण लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ज्ञान प्राप्त करने का यही सबसे उत्तम तरीका है, क्योंकि ज्ञान जो है वो परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है, अपने प्रयास से नहीं। हम शास्त्रों का अध्ययन कर लेंगे, सारे श्लोक भी हमें आ जाएंगे, लेकिन निष्कर्ष जो है समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग गुरु और वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद। कृष्ण के सद्विवेक का प्रदर्शन तब हुआ जब वे मथुरा नगरी पर आक्रमण करने वाले अछूत राजा यवनराज, कौन थे? काल्यवन, यहां नाम नहीं लिखा है लेकिन यहां पर सिर्फ लिखा है यवनराज, से युद्ध कर रहे थे। वैदिक कर्म कांड के अनुसार क्षत्रिय राजा छूतों को उनका वध करते समय भी नहीं छूते। वास्तव में जो शूद्र की बात की जाती है तो इस कारण से नहीं कि जन्म के कारण, अभी तो इसलिए कि उनके कर्म ऐसे होते हैं, उस कारण से इस प्रकार से ये प्रथा थी। जैसे मान लीजिए कि कोई मलेच्छ के साथ आप बैठे हैं और उस थाली में उसने अभी कुछ ही समय पहले मांस भक्षण किया है और धो के रखा हुआ है, तो क्या उस थाली में आप खाएंगे? नहीं खाएंगे ना, तो अछूत ही तो हुआ वो। तो इस तरह से ये वैदिक संस्कृति रही है। तो ऐसे घरों में जाकर लोग जल भी नहीं पीते थे, ऐसे लोगों को मिलना भी नहीं चाहते थे। लेकिन ये तो शूद्रों का भी जो कार्य था वो इस प्रकार का होता था कि क्षत्रिय लोग उनसे मिलते नहीं थे या उनका स्पर्श नहीं करते थे, फिर भी उसका वध होना था। अतएव जब उस अछूत राजा से ने मथुरा नगरी को घेर लिया तो कृष्ण ने उसका वध अपने हाथों से करना उचित नहीं समझा। फिर भी उसका वध होना था, अतएव कृष्ण ने अपने सद्विवेक से निश्चय किया कि उन्हें युद्ध भूमि से भाग जाना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? रणछोर भी है। रणछोर, एक रणछोर का मंदिर भी है शायद गुजरात में, है ना? एक बार आया था बैक टू गॉर्डन मैगजीन में आया था ना, राधा रणछोर बिहारी। अच्छा अच्छा, क्या है? डकोर, डकोर, ठीक है। फिर भी उसका वध होना था, अतएव कृष्ण ने अपने सद्विवेक से निश्चय किया कि उन्हें युद्ध भूमि से भाग जाना चाहिए, जिससे वे अछूत राजा उनका पीछा करे। इस तरह वे उस राजा को उस पर्वत में ले जाएं जहां मुचुकुंद सो रहा था। मुचुकुंद ने बहुत लंबे समय तक युद्ध किया था, अब वो विश्राम करना चाह रहा था और काफी थका हुआ लग रहा था, उसने कहा कि मैं विश्राम करना चाहता हूं। लेकिन उसको ये वरदान मिला था कि अगर कोई उसको उठाएगा तो उसकी आंखों में इतनी शक्ति होगी कि वो भस्म हो जाएगा उनके देखने मात्र से। मुचुकुंद को कार्तिकेय से ये वर प्राप्त हुआ था कि जब अपनी नींद से उठेगा तो उस समय जो भी उसके समक्ष होगा वह जलकर क्षार हो जाएगा। अतएव कृष्ण ने उचित समझा कि इस अछूत राजा को वह उस गुफा में ले जाएं जहां राजा के जाने से मुचुकुंद की निद्रा भंग हो और वह तुरंत जलकर भस्म हो जाए। तो इसी तरह से हुआ। तो इस तरह से काल्यवन को भगवान श्री कृष्ण वहां तक ले गए, मुचुकुंद के पास ले गए, और इस तरह से जैसे ही मुचुकुंद ने देखा तो काल्यवन जो है भस्म हो गया। प्रतिभावान, प्रतिभावान, प्रतिभावान का मतलब क्या होता है? टैलेंटेड, टैलेंटेड, ठीक बोला आपने। जो व्यक्ति अपने नए नए तर्कों से किसी भी प्रकार की विरोधी बात को काट सके वह प्रतिभावान कहलाता है। तो यहां पर इस तरह से बताया, इस तरह का टैलेंट बताया, जैसे प्रभुपाद के पास भी टैलेंट था। प्रभुपाद प्रतिभाशाली थे, है ना? प्रभुपाद जानते थे कैसे तर्कों को काटा जाए, बहुत आसानी से प्रभुपाद उत्तर दिया करते थे। किसी ने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद आपके जो शास्त्र है ना ये व्यवहारिक नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। प्रभुपाद ने कहा क्या शास्त्र व्यवहारिक नहीं है? शरीर का परिवर्तन नहीं होता क्या? बोलते हाँ होता है, तो यही तो लिखा है शास्त्र में। जो हो रहा है वही शास्त्र में लिखा है। तो प्रभुपाद के पास एक कला थी, कठिन से कठिन बातों को बहुत आसानी से प्रस्तुत करते थे, प्रतिभाशाली थे प्रभुपाद, है ना, विरोधी बात को बड़ी आसानी से काट देते थे प्रभुपाद। इस संबंध में पद्यावली में एक श्लोक आता है जिसपे राधा तथा कृष्ण का ये वार्तालाप है। एक दिन प्रातःकाल जब कृष्ण राधा के पास आए तो राधा ने पूछा, हे केशव, इस समय आपका वास कहाँ है? ये इसी तरह का प्रसंग है जो एक बार जो स्थान है ब्रज में, जब ब्रज की शुरुआत होती है, उस स्थान का नाम है कोसी। तो वहां पर भी इसी तरह कृष्ण मिलने आए थे, ये ऐसा लगता है कि लीला वहीं पे हुई भी शायद। तो इसी तरह कृष्ण भी श्रीमती राधारानी से मिलना चाहते थे, तो जब भी राधारानी पूछती थी कौन है कौन है, तो कृष्ण उसका उल्टा ही अर्थ देते थे, क्योंकि संस्कृत भाषा में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो संस्कृत शब्द वास के तीन अर्थ होते हैं, निवास, सुगंध तथा वस्त्र। वास, वास्तव में राधारानी ने कृष्ण से पूछा था कि आपका वस्त्र कहाँ है, किंतु कृष्ण ने इसका अर्थ निवास लगाते हुए राधारानी को उत्तर दिया, हे मुग्धे, इस समय मेरा वास तुम्हारे सुंदर नेत्रों में है। इस पर राधारानी बोली, अरे नटखट बालक, मैंने तुमसे तुम्हारे निवास के बारे में नहीं पूछा, मैंने तो तुम्हारे वास के विषय में पूछा था। तब कृष्ण ने वास का अर्थ सुगंध लगाते हुए कहा, हे भाग्यशालिनी, मैंने तुम्हारे शरीर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अभी अभी सुगंध लगाई है। श्रीमती राधारानी ने पुनः कृष्ण से पूछा, तुमने रात कहां बिताई? संस्कृत में वाक्य था यामिन्याम, यामिन्याम का अर्थ है रात में, तथा उषिता का अर्थ है बिताना, किंतु कृष्ण ने यामिन्याम, यामिन्याम या और उसके बाद बोला मुषिता के रूप में किया, यानी कि संधि विच्छेद किया, यामिन्या तथा मुषिता के रूप में किया, जिससे इसका अर्थ यह हो गया कि यामिनी अर्थात रात के द्वारा उनका अपहरण हो गया था, रात्रि के द्वारा उनका अपहरण हो गया था। संधि विच्छेद कर दिया ना, तो संधि विच्छेद करने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। फिर से सुनिए ध्यान से इसको। श्रीमती राधारानी ने पुनः कृष्ण से पूछा, तुमने रात कहीं कहां बिताई? तो संस्कृत में वाक्य क्या था, यामनियाम, यामनियाम का अर्थ है रात में, तथा उषिता का अर्थ है बिताना। और अब क्या, किंतु कृष्ण ने यामनियाम उषिता का संधि विच्छेद कैसे किया, यामनिया मुषिता, उषिता नहीं मुषिता कर दिया उन्होंने, के रूप में किया, जिसके जिससे अर्थ ये हो गया कि यामिनी अर्थात रात्रि के द्वारा उनका अपहरण हो गया था, रात्रि के द्वारा अपहरण हो गया था। उन्होंने क्या पूछा था कि रात कहां बिताई, श्रीमती राधा ने पूछा था, और अब क्या अर्थ बन गया, हाँ, यामिनी अर्थात रात्रि के द्वारा उनका अपहरण हो गया था। जिस पर कृष्ण ने राधारानी को उत्तर दिया, हे राधारानी, क्या यह संभव है कि रात मेरा अपहरण कर सके? वे राधारानी के प्रश्नों का उत्तर इस चतुराई से दे रहे थे कि इससे गोपियों में श्रेष्ठ राधा प्रफुल्लित हो उठी। तो इस तरह से भगवान जो है वो बड़े प्रतिभाशाली थे, प्रतिभावान, टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड थे भगवान, प्रतिभाशाली। तो प्रभुपाद बहुत प्रतिभाशाली थे, प्रभुपाद जानते थे कैसे कैसे जो कठिन से कठिन प्रश्न होते थे वैज्ञानिक लोग प्रस्तुत करते थे, या दार्शनिक लोग प्रस्तुत करते थे, या कोई भी शिष्य उनसे कोई प्रश्न पूछता था, प्रभुपाद बड़े आसानी से उन प्रश्नों का बड़ा सरल उत्तर देते थे, है ना। ये प्रभुपाद की दक्षता थी। जैसे कि हमने उस दिन भी बताया था कि जब प्रभुपाद डॉक्टर मिश्रा के वहाँ पर घर पर ठहरे थे, वहाँ पर योगा सिखाते थे डॉक्टर मिश्रा, और वो पक्के मायावादी थे, और उनके पास भी कई अमेरिकन आते थे योगा सीखने के लिए, और वो भी कुछ वहाँ पे प्रवचन वगैरह करते थे, मायावाद भाषण सुनाते थे। तो प्रभुपाद से वो डरते थे थोड़ा, क्योंकि उनको डर ये था कि उनके शिष्य प्रभुपाद के पास में चले जाए। लेकिन प्रभुपाद ऐसा कर नहीं रहे थे, कि प्रभुपाद ने ऐसा विचार नहीं रखा, चाहते तो प्रभुपाद कर सकते थे, लेकिन प्रभुपाद ने कहा ये ठीक नहीं है, ये सदाचार नहीं है। लेकिन एक बार वो ऐसा बता रहे थे कि हम सब एक हैं, अभी ये क्षण भर के लिए या कुछ समय के लिए हमारे ऊपर माया का प्रभाव है, कुछ समय के बाद हम सब एक हो जाएंगे। तो प्रभुपाद ने सुना और प्रभुपाद ने प्रवचन के बाद उनसे पूछा, आपने क्या कहा था? उन्होंने कहा हम सब एक हैं। प्रभुपाद कहते हैं मैं आपसे सहमत नहीं हूं, इसलिए हम सब एक नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपने प्रवचन के दौरान ये बताया कि हम सब वास्तव में अपने असली अस्तित्व को भूल गए हैं, जैसे ही हम लोगों को याद आ जाएगा तो हम में और भगवान में कोई भेद नहीं रहेगा, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा लेकिन भगवान तो गीता में ये बता रहे हैं चौथे अध्याय में अर्जुन को कि तुमने और मैंने कई जन्म बिता दिए हैं, मुझे तो सभी जन्मों का स्मरण है लेकिन तुम्हें नहीं है। भगवान तो ऐसे कह रहे हैं गीता में, बोलते हैं हाँ वो बात सही है लेकिन इसका यही निष्कर्ष निकलता है। बोलते कोई ठीक बात है, कोई बात नहीं, हम तर्क नहीं करेंगे, आप उन भगवान में विश्वास रखिए जो भूल जाते हैं। प्रभुपाद ने कहा लेकिन हम उस भगवान कृष्ण पर विश्वास रखते हैं जो हमेशा याद रखते हैं, और इस तरह से देखा जाए फिर भी हम एक नहीं हैं, दो हो गए। तो मध्वाचार्य संप्रदाय में मायावादी भाष्य का खंडन करने के लिए 100 ऐसे श्लोकों की रचना की गई है। मायावाद शतदूषणी करके उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है जिसमें 100 श्लोकों के द्वारा उन्होंने मायावाद दर्शन का खंडन किया है, लेकिन प्रभुपाल एक ही लाइन में खंडन कर देते हैं कि उसके बाद उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये प्रभुपाद की दक्षता था, प्रतिभाशाली थे प्रभुपाद। विदग्ध, जो व्यक्ति अत्यंत कलात्मक ढंग से बातचीत कर सके और वस्त्र धारण कर सके वह विदग्ध कहलाता है। जैसे एक ग्रंथ की रचना की श्रील रूप गोस्वामी ने, और उस ग्रंथ का नाम क्या लिखा, विदग्ध माधव। उस ग्रंथ का नाम 2 ग्रंथ लिखे थे उन्होंने, एक था ललित माधव और दूसरा विदग्ध माधव। ये गुण श्री कृष्ण में देखा जा सकता था। राधा रानी ने इस बारे में इस प्रकार कहा है, हे सखी जरा देखो तो कृष्ण ने कितने सुंदर गीत बनाए हैं, और वे किस ढंग से नाच रहे हैं, वे किस तरह हंसाने वाली बातें कर रहे हैं और अपनी बांसुरी बजाते हैं, वे कितनी सुंदर मालाएं धारण किए हैं, उन्होंने इतने मोहक ढंग से वस्त्र धारण किए हैं मानो उन्होंने शतरंज के सारे खिलाड़ियों को जीत लिया हो, वे कलाकारिता के सर्वोच्च शिखर पर विचित्र रूप में रह रहे हैं। तो इस तरह से राधा रानी जो है कृष्ण की प्रशंसा कर रही है, उनकी उनकी विदुकता को की प्रशंसा कर रहे हैं, कितने कलात्मक ढंग से भगवान बातचीत करते हैं और साथ में वस्त्र धारण करते हैं। चतुर, जो व्यक्ति तुरंत एक साथ अनेक काम कर सके वह चतुर कहलाता है। जैसे हमारे महाराज हैं श्रील प्रभुपाद और कई ऐसे वैष्णव जो एक ही समय में बहुत सारे कार्य करते हैं, है ना। तो उनके साथ जो लगे रहते हैं सेवा में वो सोचते हैं कि पहला कौन सा कार्य करूं। ये दक्षता है, ये भी एक चतुरता है। इस प्रसंग में गोपी कहती है, हे सखियों देखो ना श्री कृष्ण की चतुराइयों को, उन्होंने ग्वालों के विषय में सुंदर गीत रचे हैं और वे गायों को भी आह्लादित कर रहे हैं, वे अपनी आंखों की मटक से गोपियों को प्रसन्न कर रहे हैं, और साथ ही वे अरिष्टासुर जैसे असुरों से लड़ते भी हैं। सबसे सब कुछ साथ साथ हो रहा है, असुरों का वध भी हो रहा है, भोजन लीला भी हो रही है सब कुछ हो रहा है साथ साथ। इस तरह वे विभिन्न जीवों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से आसीन है और पूरा पूरा आनंद उठा रहे हैं, यानी कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि जीव हैं। और भगवान कृष्ण की चतुरता देखिए कि प्रत्येक जीव के साथ भगवान व्यक्तिगत संबंध रखते हैं, है ना। एक ही समय में गोलोक एवं निवसती अखिलात्म भूतो, गोलोक में भी रहते हैं और सब जीवात्माओं के साथ भी रहते हैं, इससे बड़ी चतुरता क्या हो सकती है, है ना। और गोलोक भी नहीं छोड़ते हैं और बाकी अन्य कार्य भी कर जाते हैं, जैसे कि वृंदावनम प्रत्यर्च पादेकम न गच्छति, तो वृंदावन कभी छोड़ते नहीं है लेकिन मथुरा द्वारका का भी कार्य करके करके आ जाते हैं है कि नहीं? और ऐसा लगता भी है कि वृंदावन छोड़ा उन्होंने। कितनी अद्भुत बात है, देखिए भगवान की चतुराई। और भगवान की प्रत्येक लीलाएं नित्य लीलाएं होती हैं। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, यहां पूतना का वध हुआ नहीं, वही लीला जो है अन्य ब्रह्मांड में उसी समय प्रकट हो जाती है। एक मूवी की तरह, मूवी में सीन्स होते हैं, एक सीन के बाद दूसरा सीन आता है। तो कैसे हो रहा है ये सब? अचिंत शक्ति है भगवान की, कोई समझ भी नहीं सकता है। जैसे सूर्यास्त यहां पर हुआ तो इसका मतलब कहीं और सूर्य उदय हो रहा है, यहां सूर्य अस्त हो रहा है इसका मतलब कहीं सूर्य उदय हो रहा है, वही एक सूर्य है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे सूर्य हैं। पहले ऐसा वैज्ञानिक लोग सोचते थे, है ना, पहले ऐसा सोचते थे कि अमेरिका में दूसरा सूर्य है, इंडिया में कोई और सूर्य है, या इस ब्रह्मांड में। आज भी वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि बहुत सारे सूर्य हैं, सोचते कि नहीं? लेकिन श्रीमद् भागवत कहता है कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही सूर्य है, तो वो एक सूर्य है ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे हैं। तो सूर्य में इतनी दक्षता है, भगवान की सृष्टि में ही इतनी दक्षता और चतुराई है। ये चतुराई नहीं तो क्या है, ये जो चतुरता है, ये सूर्य की चतुरता है। ऐसा लगता है कि रात हो गई और कहीं आप जाएंगे तो वहां पर देखेंगे वहां पर धूप निकल आई है। और इसी तरह से आप कई कार्य एक साथ होते हैं, सृष्टि में भी कई कार्य एक होते हैं, भगवान की जो शक्तियां हैं वो भी कई कार्य करते हैं। इसलिए शास्त्रों में क्या बताया गया, स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिय च पराशर शक्तिर विविधेव श्रूयते। भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा अनेकों कार्य करते हैं एक साथ, है ना, तो ये भगवान की चतुराई है। जैसे प्रभुपाद को हम देखते हैं कि प्रभुपाद लेटे हैं और प्रभुपाद अपना मसाज भी करा रहे हैं और साथ में प्रभुपाद चर्चा भी कर रहे हैं कि इधर क्या हुआ उधर क्या हुआ, एक ही समय में प्रभुपाद कई कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रभुपाद इस तरह से चतुर थे, एक्सपर्ट थे, क्लेवर थे। चतुर का मतलब क्लेवर होता है ना, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर बोलते हैं ना कि कृष्ण के भक्त बड़े चतुर होते हैं। दक्ष, जो व्यक्ति किसी कठिन काम को तुरंत संपन्न कर दे वह दक्ष कहलाता है। थोड़ा सा अंतर है इसमें, चतुरता में और दक्षता में। श्रीमद् भागवत में कृष्ण की दक्षता के विषय में एक कथन है जिसमें सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, श्री कृष्ण ने विभिन्न योद्धाओं द्वारा प्रयुक्त किए गए सारे आयुधों को खंड खंड कर दिया। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के तीरों के द्वारा युद्ध किया जाता था। एक पक्ष से कोई तीर छोड़ जाता था तो उसको काटने के लिए विपक्ष दूसरे प्रकार का तीर छोड़ता था। उदाहरणार्थ यदि एक पक्ष ऐसा तीर छोड़ता जो आकाश से जल की वर्षा करता तो विपक्ष से ऐसा तीर छोड़ा जाता जो जल को तुरंत बादल में परिणत कर देता। यहां से जल निकला वहां से बादल निकला। इस कथन से प्रतीत होता है कि कृष्ण शत्रु के तीर का सामना करने में अत्यंत दक्ष थे। इसी प्रकार रास नृत्य में प्रत्येक गोपी कृष्ण को अपना संगी बनाना चाहती थी, अतएव कृष्ण ने तुरंत अपना विस्तार अनेक कृष्णों में कर लिया जिससे वे हर गोपी का साथ दे सकें। फल ये हुआ कि वे हर गोपी के पार्श्व में दिखलाई पड़े। जैसे महाभारत के युद्ध में भी आज हम चर्चा कर रहे थे कि इस तरह से भीष्म पितामह के वचन को रखने के लिए भगवान कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया, क्योंकि भीष्म पितामह ने क्या बोला था, क्या बोला था उन्होंने, प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने, है ना, कि सूर्यास्त से पहले क्या करेंगे, वो उन पांच पांडवों का वध रख कर देंगे, पांच बाण थे उनके पास। तो भगवान कृष्ण बड़े चतुर थे, ये भी चतुर था उनकी, और वो चतुराई से उनसे सारे बाण ले गए। और लेकिन भगवान फिर क्रोधित हुए, क्या क्रोधित हुए, उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात है, ये स्वयं कृष्ण ही थे, लेकिन मैं भी देखता हूं कि कल सूर्यास्त से पहले मैं कृष्ण को मजबूर कर दूंगा कि वो इस युद्ध भूमि में शस्त्र उठाएंगे। तो भीष्म पितामह ने क्योंकि ये वचन ले लिया और भगवान ने सुन लिया, तो तो अपने भक्त के वचन को रखने के लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि दोनों कार्य पूरे हो गए। कैसे? भीष्म पितामह ने बड़ा घोर युद्ध किया और ऐसा आक्रमण किया, अर्जुन का रथ जो है वो टूट गया। भगवान कृष्ण सारथी के रूप में बैठे थे और इतनी तेजी से बाण आ रहा था कि अर्जुन जो है अपने बाण को भी नहीं उठा पा रहे थे और चलाने की दूर की बात है कि जब तक वो उठाते तब तक पता नहीं कितने बाण सामने से आ जाते और उनको लग रहा था कि अब तो खत्म होने वाला हूं मैं। और भीष्म पितामह ने सोचा कि अब बस ये इस बाण से जो है मैं अर्जुन को समाप्त कर दूंगा। तो उस समय भगवान कृष्ण ने क्या किया, क्या दक्षता दिखाई उन्होंने, उन्होंने रथ को नीचे कर दिया और बाण ऊपर से चला गया। और उसके बाद भीष्म पितामह को फिर और क्रोध आया, उन्होंने रथ को ही तोड़ दिया रथ का पहिया निकल गया एक तरफ। तो ये बहुत बड़ा अपमान था अर्जुन के लिए, और क्योंकि कृष्ण भी सारथी थे। लेकिन भगवान ने क्या किया, अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना वचन तोड़ दिया जो उन्होंने द्वारका में दुर्योधन और अर्जुन के सामने रखा था कि मैं युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और उन्होंने क्या किया, पहिया उठाया, रथ का पहिया उठाया और बड़ी तेजी से आगे भागने लगे। और भीष्म पितामह ने जब यह दृश्य देखा तो बड़ा आनंद आया उनको, उन्होंने बाण सब छोड़ दिया, निहत्ते हो गए और भगवान कृष्ण के इस रौद्र रूप को देखा उन्होंने, जिसका वो बहुत दिनों से बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे कि कब मैं श्री कृष्ण का ये रौद्र रस का आस्वादन करूंगा। भीष्म पितामह इसी कारण से इतनी तेजी से बाण चला रहे थे अर्जुन के ऊपर, इस कारण से नहीं कि अर्जुन को मारना है, बल्कि इसलिए कि भगवान कृष्ण जो है इस रौद्र रस को प्रकट करें और उस रौद्र रस का मैं आस्वादन कर पाऊं। और भगवान को कैसा लग रहा था, भगवान को ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर तो ये फूलों की वर्षा हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है तो भगवान को इस तरह से लग रहा था कि भीष्म पितामह मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं, हालांकि उनके शरीर से खून निकल रहा था, बाण के शरीर में लग रहे थे, खून निकल रहे थे। भीष्म पितामह बार बार बाण चला रहे थे लेकिन भगवान को बड़ा अच्छा लग रहा था, वाह क्या फूलों की बरसात हो रही है। और एक समय तो ऐसा भी लगा कृष्ण को, श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं श्रीमद् भागवत में, प्रभुपाद लिख रहे हैं, विश्वनाथ जी ठाकुर ने टीका में लिखा है कि श्री कृष्ण को ऐसा भी लगा कि गोपियां उनके ओर आक्रमण कर रही हैं और बार बार अपने नाखून से गोपियां उनके शरीर को स्पर्श कर रही हैं, ऐसा भी कृष्ण को लगा। विश्वनाथ जी ठाकुर जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी माधुरी रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो इतनी सारी दक्षता है देखिए भगवान कृष्ण की। और पहले जैसे चतुर भी बताया गया, तो चतुर और दक्ष बहुत मिलता जुलता है, इसमें चतुरता भी देख रहे हैं और दक्षता भी देख रहे हैं भगवान की, कि भक्तों की इच्छा भी पूरा कर रहे हैं, भीष्म पितामह ने जो वचन लिया उस वचन को भी पूरा किया, साथ में अर्जुन की रक्षा भी की। और उसके बाद क्या किया, अर्जुन ने उनके पांव पकड़ लिए कि ये क्या कर रहे हैं आप, कृष्ण आप अस्त्र उठा रहे हैं, आपने तो वचन लिया है कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे युद्ध भूमि में, ये क्या कर रहे हैं आप। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान जो है इस प्रकार कठिन से कठिन काम को भी तुरंत संपन्न कर देते हैं, बड़ी दक्षता से, बड़ी आसानी से। कृष्ण की दक्षता के विषय में एक कथन है, ये आगे पढ़, अच्छा ये पढ़ लिया हमने ना, आगे कृतज्ञ, ये 17th है क्वालिटी, कृतज्ञ। जो व्यक्ति अपने मित्र के लाभप्रद कार्यों से सचेत रहता है और उसकी सेवा को कभी नहीं भूलता वह कृतज्ञ कहलाता है। महाभारत में कृष्ण कहते हैं, जब मैं द्रौपदी से दूर था तो उसने हे गोविंद कहकर पुकारा, उसके इस प्रकार पुकार ने मुझे उसका ऋणी बना दिया और वह ऋण भार मेरे हृदय में क्रमशः बढ़ता जा रहा है। कृष्ण का ये वाक्य इसका प्रमाण है कि भगवान को हे कृष्ण हे गोविंद के संबोधन से किस तरह प्रसन्न किया जा सकता है। और फिर प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र भी भगवान तथा उनकी शक्ति का संबोधन है। अतः ऐसे व्यक्ति के प्रति जो भगवान तथा उनकी शक्ति को संबोधित करने में निरंतर लगा रहता है, हम ये कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कितने कृतज्ञ हैं। भगवान द्वारा ऐसे भक्त को भूल पाना संभव है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो भगवान को संबोधित करता है वह उनका ध्यान तुरंत आकर्षित कर लेता है और वह सदैव उसके कृतज्ञ बने रहते हैं। इसलिए राजा कुलक्षेत्र ने जो प्रार्थना की मुकुंदमाला स्तोत्र में, क्या प्रार्थना है? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैम मे विशतो मानस राज हमसहा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई कंठा व्रधोन विधौ स्मरणम कुतस्ते, कि अंतकाल में मेरा कंठ कफ वात और पित्त से भर जाएगा, उसमें कैसे संभव होगा कि मैं आपके नामों का उच्चारण कर पाऊंगा, कैसे संभव होगा कि मैं आपका स्मरण कर पाऊंगा। अभी मैं स्वस्थ हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो हंस रूपी मन है आपके कमल सदृश जो चरण है उसमें जकड़ लें आप इस हंस रूपी मन को, क्योंकि मैं अभी स्वस्थ हूं, मैं अभी आपका चिंतन कर पा रहा हूं, अंतिम समय में संभव नहीं हो पाया, अंतिम समय में संभव नहीं हो पाएगा। तो किसी अन्य पुराण में ये वर्णन मिलता है कि भगवान कृष्ण जो है उस बात का उत्तर दे रहे हैं। राजा कुलक्षेत्र ने जो बोला ऐसा, उसका उत्तर दिया भगवान ने। उसका उत्तर क्या दिया कि जो भक्त जीवन भर श्रवण कीर्तन करता है, मेरा श्रवण कीर्तन करता है, मेरा गुणानुवाद करता है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, सेवा करता है ना, और गुरु की सेवा में तत्पर रहता है जीवन भर, लेकिन अंतकाल में श्वास ठीक ना होने के कारण उसका कंठ कफ वात और पित्त से भर जाता है, वो इस अवस्था में नहीं रहता है कि वो हरिनाम भी ले सके। तो भगवान बोल रहे हैं, उस पुराण में प्रसंग आ रहा है, भगवान कहते हैं कि मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं। मैं कृतज्ञ, क्या उल्टा क्या होता है कृतज्ञ? मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं कि कोई जीवन भर मेरे नामों का उच्चारण कर रहा हो, मेरे बारे में सुन रहा हो और मैं अंत में वो कंठ उसका कफ वात और पित्त से भर जाए और इस कारण से वो मेरे नामों का उच्चारण नहीं कर पाता, ना मेरा स्मरण कर पा रहा है, तो मैं कृतज्ञ नहीं हूं। मैं उसको शक्ति दूंगा अंतिम समय में कि वो मेरा स्मरण कर पाएगा। और ये बिल्कुल बात बिल्कुल शत प्रतिशत सच है। वर्तमान समय भी हमने देखे हैं कई वैष्णव जिन्होंने शरीर छोड़ा, हमने उनको अपनी आंखों से देखा सीधा मायापुर में, कैसे महाप्रभु उनके लिए व्यवस्था किए, अंतिम समय में कैसे कैसी व्यवस्था हुई उन वैष्णवों के लिए कि अनेकानेक भक्त आए पूरे विश्व भर से उत्सव के समय और उनके लिए श्रवण कीर्तन कर रहे थे। इसी को कहते हैं भगवान कितने कृतज्ञ हैं। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे, हमें अपना ही कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, इंश्योरेंस कर लेना चाहिए, है ना, कल का क्या भरोसा, कहीं सड़क पे आ गए तो, जैसे अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान से गीता में, इसी तरह के विचार हमारे मन में भी रहते हैं। अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान से? अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि ना घर के रहेंगे ना घाट के, है ना, अर्जुन ने इस तरह का प्रश्न किया था ना। तो भगवान ने क्या बोला था? चिंता मत करो, शुचि नाम शुमताम गे योग भ्रष्टा विजायते। और भगवान ने यह भी बताया कि जहां उसने भक्ति छोड़ी है वहीं से वो भक्ति प्रारंभ करेगा। तो भगवान ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? स्वल्प भी अपी अस्य धर्मस्य त्रायते महतो बयार, थोड़ा सा भी इस मार्ग में कोई आगे बढ़ता है तो बड़े से बड़े खतरे से उसको छुटकारा मिलता है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये भगवान की कृतज्ञता है कि भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि डरो मत। हम सब डरते हैं, संसार छोड़ने के लिए डरते हैं, ये शरीर छोड़ने में भी डरेंगे हम लोग। जिस चीज वस्तु से, जिस व्यक्ति से हमारी आसक्ति होगी उसको छोड़ने में हमें डरेंगे हम लोग। डर का कारण है आसक्ति, है ना, इसलिए हमेशा हम लोग आसक्ति के कारण किसी ना किसी को पकड़े हुए हैं। जैसे आज हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, पकड़ने और छोड़ने की चर्चा हो रही थी भागवत कक्षा में। तो उद्देश्य हमारा यह था कहने का कि आसक्ति के कारण हम कुछ छोड़ते नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि आपने शारीरिक रूप से किसी को पकड़ा हो। कोई हो सकता है कि कोई अमेरिका में हो, कोई मॉरिशियस में हो, लेकिन भक्त यहां पर है, लेकिन मॉरिशियस की चिंता हो रही है या मॉरिशियस के लोगों की चिंता हो रही है, तो यहां रहकर भी उन्होंने उनको पकड़ा हुआ है। पकड़ा हुआ कि नहीं? इसको कहते हैं आसक्ति के कारण किसी को हम पकड़ के रखते हैं, और मन का काम ही है किसी ना किसी को पकड़ना और किसी ना किसी वस्तु या व्यक्ति को अपने अंदर बिठाना। मन के पास इतनी जगह है जितना स्थान आपके हार्ड डिस्क में भी नहीं होगा। कई जन्मों का इसमें लेखा जोखा है, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे मन में क्या क्या बातें फीड की हुई है हमने, इसका अंदाजा भी नहीं लगाते हैं। इसलिए जो सपना भी आता है वो सपना वास्तव में झूठा नहीं होता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो घटना घटी है, और कभी ना कभी वो मन दिखाता है, मिला जुला कर दिखाता है, कहीं सोना देख लिया, प्रभुपाद कहते हैं कहीं पहाड़ देख लिया, सपने में देखा सोने का पहाड़। प्रभुपाद कहते हैं ना, तो इस प्रकार ये होता है। तो हम लोग छोड़ना नहीं चाहते कुछ भी, इस कारण से आसक्ति बनी रहती है। लेकिन भक्त जो जीवन भर श्रवण कीर्तन कर रहा है, शरणागत है भगवान की सेवा में, उसके लिए छोड़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी मदद करते हैं। योगक्षेम वहामि अहम्, भगवान कहते हैं कि मैं उसकी स्वयं रक्षा करता हूं। अनन्यस चिंतयन्तु माम, ये उसके लिए क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी है। अनन्यस चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम्। ये असली इंश्योरेंस है, और इस बात में पूरा विश्वास श्रद्धा होना चाहिए। लेकिन हम भारी चीजों पर विश्वास रखेंगे, भारी सुविधाओं पर विश्वास रखेंगे, तो हमारी भक्ति जो है फिर वो मिश्रित हो जाएगी, कर्म मिश्रित भक्ति हो जाएगी, शुद्ध भक्ति के धरातल पर हम कभी भी नहीं आ पाएंगे। हमें शरणागत होना पड़ेगा और निर्भर रहना पड़ेगा कि निश्चित रूप से भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ये शरणागति का एक लक्षण है, रक्षति विश्वास हो। छह लक्षण बताए ना शरणागति के, उसमें से पहला लक्षण क्या है, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षति विश्वास हो, गोपुत्र ते वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य। तो ये छह लक्षण शरणागति के बताए हैं। इसका अर्थ यही है कि हमें इस पे विश्वास रखना है कि भगवान कृतज्ञ हैं, वो जानते हैं कि अगर आपने ये छह लक्षण प्रकट किए हैं शरणागति के द्वारा, तो मैं क्या कृतज्ञ हूं, मैं ऐसे ही भूल जाऊंगा, जो दिन रात मेरी सेवा कर रहा है उसको मैं ऐसे ही भूल जाऊंगा। एक चुहिया को भगवान ने इतना ऊंचा दर्जा दे दिया, जिसने कार्तिक के मास में क्या किया, दीपदान कर दिया अनजाने में, नरसिंह पुराण में कथा आती है, उसने क्या किया, उसको भूख लग रही थी, उसे देखा कि वहां पर कुछ रुई नजर आ रही है, उसको लगा खाने को है कुछ। अब उसको क्या पता था कि वो दीपदान हो रहा था, तो वो दिया जो है थोड़ा बुझ रहा था, तो चूहिया उसको खाने के लिए गई और जैसे उसने स्पर्श किया वो जल गया, और जलते वो चूहिया मर गई। लेकिन भगवान ने इसको कैसा लिया, इसने कार्तिक मास में इस चूहिया ने दीपदान किया है, और अगला जन्म एकदम उसको तुरंत मनुष्य का प्राप्त हो गया। हालांकि साधारण रूप से ऐसा होता नहीं, एवोल्यूशनरी साइकिल के हिसाब से 84 लाख यूनिट से गुजरना पड़ता है, लेकिन उस चूहिया को तुरंत ही तत्काल अगले जन्म मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, और शुद्ध भक्ति करके वो भगवत धाम चले गए। अज्ञात सुकृति, अनजाने में भी कोई अगर भक्ति कर देता है, भगवान की सेवा कर देता है, तो भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं। और अगर कोई श्रद्धा से विश्वास से ये करेगा, तो क्या भगवान उसकी सहायता नहीं करेंगे। जैसे श्रील रूप गोस्वामी मथुरा महात्म्य में लिखते हैं कि कार्तिक मास में कोई केवल यही बोलता है, मथुरा 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 करके ही पुकारता है, तो ऐसे कहने पर ही वो भवसागर को पार कर जाता है। ये मथुरा महात्म्य में बताया श्रील रूप गोस्वामी ने, बहुत सुंदर ग्रंथ है ये। हालांकि उसमें इस प्रकार की कई तरह से श्रील रूप गोस्वामी ने पब्लिसिटी किया है ब्रज का, लेकिन उनका उद्देश्य है कि ये न केन प्रकार भक्त लोग जो है ब्रज मंडल आए, और खासकर कार्तिक मास में उसका पूरा लाभ उठाए, वैसे भी लाभ उठाए। तो ऐसे कोई मथुरा मथुरा करके पुकारता है और तो उसका भी उद्धार हो जाता है, लेकिन कोई श्रद्धा पूर्वक भक्ति से अगर सेवा करेगा तो क्यों नहीं भगवान की सहायता करेंगे। और अगला बताया दृढ़ संकल्प, नहीं आगे है, आगे इसी में ही है, क्षमा करिए, कृतज्ञ में बता रहे हैं। ये महामंत्र भी भगवान तथा उनकी शक्ति का संबोधन है। अतएव ऐसे व्यक्ति के प्रति जो भगवान तथा उनकी शक्ति को संबोधित करने में निरंतर लगा रहता है, हम ये कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कितने कृतज्ञ हैं। खासकर जो दिन रात प्रचार के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, है ना, जिनको अपने शरीर की बिल्कुल चिंता नहीं है, जो निद्रा और आहार के ऊपर भी विजय पा चुके हैं, ऐसे वैष्णव लोग, ऐसे गुरुजन क्या भगवान की रक्षा नहीं कर रहे हैं? क्या भगवान के बारे में नहीं सोच रहे हैं? है ना, जैसे श्रीमद् भागवत में वो श्लोक है ना, बहुत सुंदर श्लोक है, ज्ञाने प्रयास समुत्पास नमन्ते वा, हाँ यही है ना, जीवन सदमुखरिताम भवती वार्ताम साने स्थिता श्रुतिगताम तनवान मनोभीर। इस श्लोक में श्रील सनातन गोस्वामी ने टीका में लिखा है कि जिस तरह से एक भक्त जो है भगवान की सेवा करता है मन से, वाणी से, शरीर से, इसी तरह से भगवान भी मन से, वाणी से, शरीर से उस भक्त की सेवा करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने ऐसा लिखा है, मन से भगवान सदैव उस भक्त का चिंतन करते हैं, वाणी से भगवान अपने धाम में ऐसे भक्तों का निरंतर गुणगान करते हैं, और शरीर से भगवान व्यक्तिगत रूप से ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्तिगत रूप से रक्षा की अर्जुन की, और हम देखते हैं किस तरह से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो राधा कुंड के तट पर बैठकर भजन कर रहे थे, उस समय शेर पास में आके खड़ा था, राधा कुंड से जल पी रहा था, तो भगवान क्या पीछे खड़े थे तलवार लेकर, है कि नहीं, और जब उनको बहुत गर्मी लग रही थी उनको पता भी नहीं था कि उनको गर्मी लग रही है, यानी कि उनके शरीर से पसीना निकल रहा था, उनको नहीं लग रही थी गर्मी, क्योंकि तो वो तो देहात्मक बुद्धि से ऊपर थे, वो तो लीलाओं का स्मरण कर रहे थे, लेकिन वो कहाँ बैठे थे, बाहर, और पीछे क्या देखा श्री सनातन गोस्वामी ने, उन्होंने देखा कि श्रीमती राधा रानी जो है उनको कपड़े से ढक रही हैं जब वो भजन कर रहे हैं, हाँ? तो उसके बाद श्री सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला, ये आप क्या कर रहे हैं, आप ब्रज में आके आप चाहते हैं आप श्रीमती राधा रानी आपकी सेवा में लगे, हम यहाँ उनकी सेवा करने आए हैं, उनसे सेवा लेने नहीं आए हैं, आप क्यों नहीं अपने लिए भजन कुटीर बनाते? तो श्री सनातन गोस्वामी के बार बार कहने पर उन्होंने मानस पावन घाट के पीछे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना भजन कुटीर बनाया, नहीं तो भजन कुटीर भी नहीं बना रहे थे वो, और चारों तरफ उस समय जंगल था, अभी जो राधा कुंड है वैसा नहीं था, जंगली जानवर वहां रहते थे, शेर वहां रहते थे, भयानक वातावरण था, वहां पर रोशनी भी नहीं थी, हा? कि वहां पर स्ट्रीट लाइट हो, और अभी भी ऐसे ही हाल है वहां पर, बड़ा अच्छा बताते हैं हिशोलेन्द्र महाराज जी, स्वामी महाराज बड़ा अच्छा बताते हैं, जिस तरह से वृंदावन जाते हैं तो वहां बांके बिहारी का दर्शन होता है, और बार बार दर्शन खुलता है और बार बार दर्शन बंद होता है, इसी तरह से राधा कुंड में बार बार बिजली जाती है और बार बार बिजली आती है, महाराज कहते हैं बांके बिहारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है राधा कुंड में बांके बिहारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, क्योंकि बिजली बार बार आती जाती रहती है वहां पे, आज भी ऐसा हाल है वहां पर, और उस समय तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन क्योंकि ये लोग इतने उच्च कोटि के भक्त थे, भगवान के नित्य परिकर थे, तो इनको तो देहात्मक बुद्धि में थे ही नहीं, भारी सुदबुद्ध थे नहीं इनको, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड में 45 साल भजन किया, और प्रत्येक दिन वो 2000 वैष्णवों को दंडवत करते थे, और अपने गिरिराज शिला को 1000 बार प्रणाम करते थे, प्रत्येक दिन 1,00,000 नाम लेते थे, और 22.5 घंटे भजन करते थे, और एक प्रहर के लिए प्रत्येक दिन श्री चैतन्य चरितामृत से कथा करते थे, जिसको सुनने के लिए कौन आते थे, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, और इसी कारण से हमें चैतन्य चरितामृत का अंतरीला भी प्राप्त हुआ है, विस्तार से पूरा ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है और अंतरीला भी प्राप्त हुई है। रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे, जो स्वरूप दामोदर के बहुत निकट थे, जो स्वरूप दामोदर के साथ सेवा कर रहे थे, महाप्रभु की सेवा कर रहे थे जगन्नाथपुरी में, इसलिए वो यथारूप जानते थे कि क्या क्या घटना हुई। तो जो ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है परंपरा के माध्यम से श्री चैतन्य चरितामृत, ये बिल्कुल यथारूप है, एज इट इज है, जो कि श्रील प्रभुपाद ने दिया है। तो हम ये बता रहे थे, भटक गए थोड़ा सा मार्ग से, हम ये बता रहे थे कि किस तरह से भगवान भी जो है मन, वाणी और शरीर से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसे उन्होंने बड़े बड़े वैष्णवों की रक्षा की, और अंतिम समय में भगवान व्यवस्था करते हैं उस भक्त के लिए कि बड़ी आसानी से वो शरीर छोड़ सके। ये तो हो सकता है हम कहें कि उच्च 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 कोटि के वैष्णव हैं, शायद भगवान उनके लिए शायद मदद करते होंगे जो शुद्ध भक्त हैं, हमारे जैसे भक्तों का क्या होगा, इतनी बुरी हालत है हम लोगों की, तो हमारे लिए थोड़ा भगवान व्यवस्था करेंगे, तो इसलिए हमें और व्यवस्था भी करनी पड़ेगी कि नहीं, आप तो इम्प्रैक्टिकल बातें करते हो, है ना। ऐसा भी नहीं है, जैसे कई वैष्णव जो अभी हाल ही में भी कई भक्त थे हमारे गुरु भाई हैं पंजाबी बाग में, उनके पिताश्री जब शरीर छोड़ रहे थे तो उनके हाथ में भगवद गीता थी, उनके मुख में भक्तों ने राधा कुंड का जल डाला और उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने लाइफ सेविंग लाइफ सपोर्टिंग जो होते हैं डिवाइसेस होते हैं उसको उपयोग किया और उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि कुछ समय तक चलती रहेगी गाड़ी, है ना। तो उस समय भक्तों को क्या अवसर मिला कि वहां जाकर वो लोग कीर्तन करने का उनको अवसर मिल गया, उन्होंने प्रभुपाद जी का कैसेट चलाया हुआ था जपा का, और इस तरह से पूरा वातावरण ही आध्यात्मिक हो गया और इस तरह से बड़ी आसानी से, लेकिन उनके चेहरे में किसी प्रकार की शिकन नहीं थी जब वो शरीर छोड़ रहे थे, और ऐसा लगा कि बस वो सोने चले गए हैं और जैसे सो के उठेंगे तो फिर से भक्तों के बीच में अपने आप को पाएंगे। प्रभुपाद ऐसे ही कहते हैं कि प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद भक्त भी तो शरीर छोड़ते हैं, प्रभुपाद कहते हैं हाँ, लेकिन जब भक्त शरीर छोड़ते हैं कैसे छोड़ते हैं, जैसे ही वो कोई व्यक्ति सो के उठता है तो कैसा लगता है, पास में किसी ना किसी को पाता है ना, या देखता है किसी को, किसी वस्तु को देखता है, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं जब वो शरीर छोड़ते हैं वो केवल आंखें बंद करते हैं और जैसे आगे खोलते हैं सामने कृष्ण खड़े होते हैं। तो उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। हाल ही में हमने भी देखा था कैसे एक, आप देखिएगा वो वीडियो फिल्म है उसका, रिकॉर्डेड है, हाँ, सो कृष्ण प्रभु जो राधा महाराज के शिष्य हैं उन्होंने कैसे शरीर छोड़ा और कैसे उनके गुरु जो है पूरे हफ्ते उस भक्त के साथ लगे रहे, वो आप देखिए वीडियो में, है ना। और महाराज बोल रहे हैं उस भक्त को कि आप चिंता मत करो, आप धाम जाने वाले हो, थैंक यू वेरी मच, महाराज कहते हैं, फिर बोलते हैं देयर यू विल मीट भक्ति तीर्थ स्वामी, हाँ धाम में जाके भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज से मिलोगे आप, चिंता मत करो, आपने बहुत कुछ किया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो इस तरह से आप देखेंगे कितना आदान प्रदान प्रेम का अंतिम समय में भी, और गुरु और वैष्णव लोग सब लोग उस भक्त को स्मरण करा रहे हैं, यही तो कृतज्ञता है, और क्या कृतज्ञता होती है, है ना। नहीं तो जो माया में लिप्त जो लोग हैं बाहर, जो दिन रात केवल परिश्रम कर रहे हैं इंद्रियों का तर्पण करने के लिए, उनके साथ कितना बुरा हाल होता है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जब वो सामने देखते हैं कि यमदूत आ रहे हैं उनको लेने के लिए, और देख कर कि मेरा शरीर छूटने वाला है, मैं इसे शरीर छीन के ले जाएंगे, मुझसे सब कुछ छीन के ले जाएंगे, तो रोते हैं और एकदम तत्काल ही वो मलमूत्र त्यागते हैं डर के कारण, और घर वाले उनसे चाबी छीन लेते हैं और से कागजों में साइन करा लेते हैं कि बुड्ढा शरीर छोड़ रहा है, साइन करा लो, इतनी बुरी हालत है समाज में आजकल, ये कड़वा सच है, कोई बात को स्वीकार करे ना या करे, या हो रहा है आजकल, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं लोग कि कब वो व्यक्ति मरेगा और कब सारा धन मेरे नाम पे हो जाएगा, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ का जीवन बिता रहे हैं, और स्वार्थी का जीवन बिताना है तो ये असली स्वार्थ है कि हम लोग केवल भगवान की सेवा में लगे रहे। प्रहलाद महाराज इसलिए कहते हैं नाते विदु स्वार्थ गर्ते में विश्व दुराशया दुराशया बहिर्थमान अंधा यथांधे रूपनीय महाराज ते पीश तंत्रयाम उरुधाम निबद्धा। वो जानते नहीं असली स्वार्थ क्या है, कि असली स्वार्थ है भगवान विष्णु को भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान कितने कृतज्ञ हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर बड़े ही विस्तार से चर्चा की जा सकती है, और भक्तों के सवाल में ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ये है वास्तव में इष्ट गोष्ठी। क्योंकि भक्तों को जब तक विश्वास नहीं दिलाया जाएगा, साधु संघ का अर्थ यही है कि साधु संघ में रहकर हम एक दूसरे से सुनकर श्रद्धा बढ़ाएं ताकि हम लोग भक्ति में लगे रह सकें, और अगर कोई जीवन भर हम लोग भक्ति में लगे रहें तो संभावना है कि कुछ अच्छा ही होगा, है ना। इतना तो हो कि कम से कम जीवन के अंतकाल तक हम लोग सेवा में लगे रहें, इतना हम लोग वरदान मांग सकते हैं भगवान से। लेकिन अगर इतना भी नहीं हो पाया और आधे रास्ते में छोड़ना पड़ गया या माया वापस हमें लेके चले गई तो फिर क्या होगा, फिर कम से कम कुछ समय के लिए तो माया के साथ क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और बहुत बुरा हाल होगा। और भगवान बहुत चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं जब वो देखते हैं कि भक्त जो है मुझे छोड़कर चला गया है, भक्त मुझे छोड़कर चला गया है। किसी ने पूछा कि कृष्ण की आंखें क्यों लाल रहती हैं, तो उत्तर दिया क्योंकि कृष्ण हमेशा अपने उन लोगों के बारे में, उन जीवात्माओं के बारे में सोच के बार बार रोते रहते हैं कि क्यों ये जीव जो मेरे सनातन अंश हैं मुझे क्यों छोड़ के चले गए, या उन भक्तों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने इतने साल मेरी सेवा की, क्यों ये भक्त मुझे छोड़कर चला गया। तो फिर भगवान की अवस्था करते हैं माया के द्वारा ऐसे भक्तों को जो माया के प्रभाव में आ गए हैं उनको और कष्ट देते हैं। कुछ ही सालों के बाद फिर से वो लाइन में आ जाते हैं और वृद्धावस्था तक तो कम से कम वो फिर से भक्ति में लग जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कई जो शिष्य हैं प्रभुपाद जी के, केन प्रकार चले गए थे माया के प्रभाव में, अब वो धीरे धीरे करके सबके सब वापस आ रहे हैं। कहां जाएंगे, जिसको एक बार कृष्ण भावना अमृत का आस्वादन कर लिया जिसने, वो क्या माया जगत में खुश रह पाएगा, कितने दिन रह पाएगा, वापस इधर ही आना पड़ेगा। जिसने एक बार अमृत को चख लिया वो बाहर नहीं रह सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ये भगवान कृष्ण का जो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जो हम सबको याद रखना चाहिए, है ना। कई गुण हो सकते हैं भगवान के, लेकिन ये जो गुण है भक्तों के जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके लिए निरंतर हमें धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि भगवान हमारी कितनी चिंता कर रहे हैं, जितनी चिंता भगवान हमारी कर रहे हैं हम उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। ये बात जैसे कि दुर्वासा मुनि गए वहां पर, वैकुंठ चले गए, उन्होंने कहा बचाइए बचाइए, सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड को पार कर गए। देखिए दुर्वासा मुनि की कितनी बड़ी शक्ति थी और वैकुंठ लोक तक पहुंच गए, नारायण के पास, भगवान नारायण के पास पहुंचे, मुझे बताइए बचाइए अपने सुदर्शन चक्र से, बचाइए मेरा क्या होगा। क्या किया आपने तो उन्होंने बताया, तो बोलते मैं क्या कर सकता हूं, और भगवान कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं, क्योंकि ये जो भक्त है ना ये निरंतर मेरा चिंतन करते रहते हैं और मेरी भी यही समस्या है कि मैं भी अपने भक्तों का निरंतर चिंतन करता रहता हूं। तो मुझे नहीं पता क्या करें, एक ही उपाय है वापस जाओ महाराज अम्बरीश के चरणों में गिर जाओ, उनसे आप क्षमा मांगिए, उनकी सेवा करिए, सुदर्शन चक्र अपने आप लौट आएंगे वापस। तो फिर से वैकुंठ से वापस उनको कहां आना पड़ा, भौम वृंदावन में आना पड़ा जहां महाराज अम्बरीश अभी भी एक साल तक किसका इंतजार कर रहे थे, दुर्वासा मुनि का इंतजार कर रहे थे। और अम्बरीश महाराज कह रहे थे, अम्बरीश महाराज ने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं तो इसी कारण से पूरे एक साल चिंता में था कि मैंने आपकी ठीक से सेवा नहीं की और आप दुखी होकर चले गए, मुझे आप क्षमा करिए। अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि को यह कह रहे हैं, दुर्वासा मुनि हैरान हो गए, उन्होंने कहा कि मैंने तो इनके पीछे राक्षस छोड़ा अग्नि प्रकट करके जटाओं से, लेकिन अम्बरीश महाराज मुझसे क्षमा मांग रहे हैं। तब उनको पता चला कि वास्तव में अम्बरीश महाराज कितने बड़े भक्त हैं। तो इस तरह से भगवान जो है अपने भक्तों की निरंतर रक्षा करते हैं और अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते रहते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि प्रभुपाद भी अंतिम समय में किस तरह से श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका लिख रहे थे, जबकि उनका शरीर तप रहा था, उनका शरीर तप रहा था प्रभुपाद जी के आखिरी महीने में। डॉक्टर ने जब नाड़ी पकड़ा तो प्रभुपाद के शरीर को जैसे छुआ इतना गर्म था, उन्होंने कहा कि कोई और तो होता बहुत चिल्लाता भी, इनके शरीर में इतना कष्ट है कि प्रभुपाद को हिलाया नहीं जा सकता था एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन प्रभुपाद के लेटे रहे और लेटे लेटे प्रभुपाद केवल क्या कर रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं, और आवाज से क्या निकल रही है, श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका निकल रही है। ये जो आप 13वां अध्याय पढ़ते हैं दशम स्कंद का, प्रभुपाद ने लेटे लेटे उसके ऊपर कमेंट्री दी है। यहां पर प्रद्युम्न प्रभु और उनके और शिष्य संस्कृत से भागवत के श्लोक बोल रहे हैं, टीकाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, और प्रभुपाद एकदम उसी समय तात्पर्य दे रहे हैं, उसी समय प्रभुपाद बोल रहे हैं, लेटे लेटे बोल रहे हैं। आज देखिए प्रभुपाद का क्या कॉन्शियसनेस है, है ना। ये तो सब अभी की बात है, 500 साल या 5000 साल पहले की बात नहीं है, ये अभी की बात है, है ना। तो ये वास्तव में भगवान की कृतज्ञता है, जिस भक्त ने पूरे विश्व भर में मेरे लिए प्रचार किया, इतना कष्ट उठाया कि क्या मैं उसको भूल जाऊंगा, इतनी आसानी से नहीं, भगवान कभी नहीं भूलते हैं, हम भले भूलने का प्रयास करें। दृढ़ संकल्प, जो व्यक्ति विधानों का पालन करता है और व्यवहारिक कार्य के द्वारा अपने वचनों को पूरा करता है वह दृढ़ संकल्प कहलाता है। जहां तक भगवान के दृढ़ निश्चय का संबंध है, हरि वंश में उनके व्यवहारों का उदाहरण मिलता है। यह स्वर्ग के राजा इंद्र से पारिजात पुष्प को बलपूर्वक छीन लिए जाने पर कृष्ण के साथ युद्ध के विषय में है। पारिजात इस एक प्रकार का कमल का पुष्प है जो स्वर्ग लोक में खिलता है। मतलब एक पारिजात पुष्प अगर आप यहां रख देना तो पूरे दिल्ली में उसकी सुगंध फैलेगी। स्वर्ग लोक की अगर व्याख्या हम सुनेंगे तो हो सकता है वैकुंठ जाने की कुछ लोग इच्छा ना करें, इसलिए स्वर्ग लोक की व्याख्या नहीं की जाती है। स्वर्ग लोक में इतना आकर्षण है और अल्पकाल के लिए नहीं लंबे समय के लिए होता है। एक बार कृष्ण की रानी सत्यभामा ने इस पुष्प के लिए इच्छा प्रकट की तो कृष्ण ने लाकर देने का वचन दिया, किंतु इंद्र ने अपना पारिजात पुष्प देने से मना कर दिया। अतः एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें कृष्ण तथा पांडव एक ओर थे और सारे देवता दूसरी ओर थे। अंतोद्गतवा कृष्ण ने सबों को हरा दिया और वे पारिजात पुष्प लाकर अपनी रानी को भेंट किया। अतः इस घटना के सिलसिले में कृष्ण ने नारद मुनि को बतलाया, हे देवऋषि, आप समस्त भक्तों और विशेष रूप से अभक्तों में यह घोषित कर दें कि पारिजात के प्राप्त करने में सारे देवताओं अर्थात गंधर्वों, नागों, राक्षसों, यक्षों, पन्नगों ने मुझे पराजित करना चाहा, किंतु उनमें से कोई भी मेरे द्वारा अपनी रानी को दिए गए वचन को भंग नहीं कर सका। सब पीछे लग गए थे लेकिन कोई भी हरा नहीं पाया भगवान को। भगवद गीता में कृष्ण द्वारा दिया गया दूसरा वचन यह है जिसमें वे कहते हैं कि उनका भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। तो ये देखा जाए तो गुण बहुत आपस में मिलते जुलते हैं। अभी कृतज्ञता की बात कर रहे थे और अभी यहां पर क्या बात आ गई है, दृढ़ संकल्प, कि भगवान दृढ़ संकल्प है कि वो अपने भक्तों की निश्चित रूप से रक्षा करेंगे, है ना। अतः ऐसे निष्ठावान भक्त को जो सदैव भगवान की दिव्य प्रेम सेवा में संलग्न रहते हैं, निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि कृष्ण कभी अपना वचन भंग नहीं करेंगे। वे हर हालत में अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। कौन्त्या प्रति जानाई नामे भक्तः प्रणश्यति, कुंती पुत्र तुम घोषणा करो, है ना, मैं घोषणा नहीं करूंगा, तुम घोषणा करोगे तो वचन भंग नहीं होगा। कृष्ण ने सत्यभामा को पारिजात पुष्प लाकर द्रौपदी को अपमानित होने से बचाकर तथा अर्जुन को सारे शत्रुओं के आक्रमणों से बचाकर यह दिखला दिया कि वे किस प्रकार अपने वचनों को पूरा करते हैं। कृष्ण के इस वचन को कि उनके भक्त कभी नष्ट नहीं होते इंद्र ने पहले भी स्वीकार किया था जब वह गोवर्धन लीला में परास्त हुआ था। जब कृष्ण ने व्रज वासियों को इंद्र की पूजा कृष्ण से करने से रोक दिया था तो इंद्र क्रोधित हुआ और उसने मूसलाधार वर्षा द्वारा वृंदावन को जल मग्न कर दिया, किंतु कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह उठाकर वृंदावन के सारे नागरिकों एवं पशुओं की रक्षा की। इस घटना के बाद इंद्र ने अनेक स्तुतियां की और कृष्ण की शरण ग्रहण करते हुए स्वीकार किया, आपने गोवर्धन पर्वत धारण करके तथा वृंदावन के नागरिकों की रक्षा करके अपने इस वचन को पूरा किया कि आपके भक्त कभी नष्ट नहीं होते। देखिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान ने गिरिराज जी को उठा दिया। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि मूसलाधार जो वर्षा हो रही थी और जैसे ही वो जमीन से स्पर्श होता उसी समय सूख जाता, क्योंकि भगवान ने गिरिराज जी के ऊपर अपना सुदर्शन चक्र भी छोड़ा हुआ था, तो उसका जो ताप इतना फैला हुआ था कि बरसात हो रही थी लेकिन जल जो है नीचे स्पर्श होने से पहले ही वो सूख जाता था। और चारों तरफ से गिरिराज जी के चारों तरफ से भगवान शंकरशन ने अनंत शेष ने गिरिराज जी को घेरा हुआ था, तो जल अंदर आने की कोई संभावना भी नहीं थी। इस प्रकार से भगवान रक्षा देते हैं ब्रजवासियों को। और ब्रजवासियों को कोई चिंता ही नहीं थी कि बाहर इतनी बरसात हो रही है ऊपर से, वो तो भगवान के सौंदर्य का आस्वादन कर रहे थे और भगवान भी उनको देख रहे थे। भगवान गोपियों को देख रहे थे, श्रीमती राधारानी को देख रहे थे, बलराम जी मुस्कुरा रहे थे कृष्ण को देखकर, हाँ, और बाकी सखा लोग भी आनंद ले रहे थे। कुछ सखा लोग चिंतित थे, मधुमंगल ने अपनी छड़ी लगाई गिरिराज जी के नीचे, अरे कहीं गिर ना जाए, मैं थोड़ी थोड़ा आता हूँ, अभी एक मिनट मैं भी थोड़ी छड़ी लगा देता हूँ, पसीना निकल रहा है तुम्हारे शरीर से। माता यशोदा चिंता हुई, उन्होंने वात्सल्य भाव प्रकट किया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे शरीर से पसीना निकल रहा है, पहुंच देते। तो कृष्ण जो है सभी भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे। सात दिन सात रास, सात रात, जो जिस रस में था उस रस में वो आस्वादन कर रहा था। सात दिनों सात रात ना किसी को खाने की चिंता हो रही है ना सोने की चिंता हो रही है, बस देखे जा रहे हैं कृष्ण को। ऐसा मौका फिर कभी मिलेगा नहीं, ना मिला था कभी, क्योंकि कृष्ण का कोई भरोसा नहीं है, वो तो चंचल स्वभाव के हैं, कभी यहां रहते हैं तो कभी वहां चले जाएंगे, है ना। तो लेकिन ये पहली बार ऐसा अवसर मिला था सभी ब्रजवासियों को कि लगातार सात दिन और सात रात गिरिराज जी के नीचे खड़े थे और भगवान गिरिराज जी को ऊपर उठाए हुए थे, और इस तरह से भगवान चाहते थे कि वो जाने जाएं को कि वो क्या है, गिरधारी हैं, गोवर्धनधारी हैं। उन्होंने गोवर्धन की महिमा को बढ़ाया और इंद्र को धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे जो है इस लीला में सहयोग दिया है, इस लीला को संपन्न करने में सहयोग एक तरह से इंद्र ने दिया, अगर इंद्र बरसात नहीं करते तो शायद भगवान गिरिराज जी को उठाते नहीं। लेकिन इससे पहले भगवान ने क्या किया, इंद्र के मान को भंग किया। तो ये बड़ी समस्या है, देवताओं में भी ये समस्या है, क्योंकि उनकी इतनी पूजा जब हो जाती है तो वो भी फंस जाते हैं, आसक्ति हो जाती है उनको, और खासकर जब पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक से सभी उनकी पूजा करते हैं और बाद में अचानक कोई बंद कर दे तो क्रोधित भी हो जाते हैं, है ना। जितनी जल्दी ये लोग प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी ये लोग क्रोधित भी हो जाते हैं। तो ये भी दिखाया गया इस लीला में कि इंद्र कितनी जल्दी क्रोधित हो गए कि छोटा सा बालक मेरी से पूजा रखवा दी, इतने सालों से मेरी पूजा चल रही थी। तो ये जो यश कमाने की जो इच्छा है ये कूट कूट के भरी रहती है, सब जगह ये समस्या है, सब जगह ये समस्या है। और इंद्र जो है स्वर्लोक के राजा हैं, कि छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, बहुत ऊंचा पद है इंद्र का, है ना। तो इंद्र जो है वहां पर सोच रहे हैं कि छोटा सा बालक, इसने कैसे कन्विंस कर लिया आनंद महाराज को, और इतने सालों से ये जो पूजा चल रही थी पूजा रुकवा दी, और आज इसके कहने पर क्या हुआ, इन ब्रजवासियों ने भी मेरी पूजा बंद कर दी। तो उन्होंने क्या किया, सामर्थक बालों को बुलाया जो प्रलय के समय आते हैं, आओ और बरसात करो, एक एक बूंद शेर और हाथी के पांव के बराबर, शेर के हाथी के पांव के बराबर, खंभे के समान एक एक बूंद था। कितनी तेज बरसात होगी सोच के देखिए आप, एक एक बूंद जो है खंभे के समान था, तो क्या हालत हुई होगी। लेकिन ब्रजवासी चिंतित होकर सब लोग जैसे हमेशा कृष्ण के पास जाते थे, कृष्ण के पास गए और उन्होंने बड़ी आसानी से गिरिराज जी को उठा लिया, है ना। और इतना ऐश्वर्य दिखाने के बाद भी सब यही बोल रहे थे नंद महाराज भी कि हाँ वो तो हमने सुना था गर्गाचार्य से कि इसके पास नारायण जैसे गुण होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि भगवान जब जब अपना ऐश्वर्य दिखाते थे ब्रज में, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था ब्रजवासियों के ऊपर, है ना, उनके ऐश्वर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इतना अनुराग उतना प्रेम उनका था कृष्ण से, क्योंकि वो कृष्ण को कभी भगवान के रूप में देखते ही नहीं थे प्रेम के कारण। तो यहां पर ये बात बताई गई है कि भगवान जो है अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। काल तथा परिस्थितियों के कुशल निर्णायक, कृष्ण परिस्थितियों देश काल तथा साथ समान के अनुसार लोगों से निपटने में अत्यंत कुशल थे। वे उद्धव से गोपियों के साथ अपनी रास के विषय में बतलाते हुए विशेष काल परिस्थिति तथा व्यक्ति के बारे में अपनी कुशल पटुता का परिचय देते हैं। आज जैसी शरद की पूर्णिमा की रात, इसके लिए सर्वोपयुक्त समय है। इसके लिए विश्व भर में सर्वोत्तम स्थान वृंदावन है और सर्व सुंदरी बालाएं गोपियां हैं। अतएव हे मित्र उद्धव, मुझे इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर अब रास नृत्य में संलग्न होना चाहिए। मतलब भगवान जानते हैं कि किस समय क्या बोलना है, किस समय क्या निर्णय लेना है, कहां पर क्या बोलना है, कहां क्या नहीं बोलना है, है ना। यानी कि जब देखा कर्ण को कि उनका रथ जो है, रथ का पहिया जमीन में फंस गया है, अर्जुन को कहा कि बाण चला लो, कहा कि नहीं कहा। तो भगवान ऐसा करते हैं कई बार, यानी कि बड़े कुशल निर्णायक है, डिसीजन लेने में बहुत एक्सपर्ट है और बहुत फास्ट है, है ना, और बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं। और यहां तक कि देखिए हस्तिनापुर जाकर उन्होंने दुर्योधन को कितना अच्छा मौका दिया कि ठीक है आप कुछ मत दो, कम से कम पांच गांव तो दे दो, कुछ नहीं दे सकते तो इन पांडवों को पांच गांव लेंगे इसी में खुश रहेंगे। तो दुर्योधन ने क्या कहा, मैं तो सुई की नोक भी नहीं दूंगा, खड़ी हुई सुई, गिरी हुई सुई नहीं, इतना सार में नहीं दूंगा मैं इन पांडवों को। तो फिर निर्णय लिया भगवान कृष्ण, ठीक है, फिर युद्ध का समय आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि भगवान इतने दक्ष हैं, यानी कि भगवान इतने कुशल हैं, निर्णायक हैं, कि भगवान एकदम निर्णय ले सकते हैं तत्काल ही कि कब क्या करना है। लेकिन फिर भी कृष्ण ने कितना मौका दिया, भगवान ने कितना मौका दिया। और दुर्योधन इतना दुष्ट था, उसने क्या किया, कृष्ण को ही पकड़ना चाहा, और भगवान ने फिर वहां पर अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप यानी कि वो दूसरा विराट रूप नहीं, और इतना प्रकाश फैलाया, इतना प्रकाश फैलाया कि कोई उनको देखता देख नहीं पा रहा था। और इस तरह से कृष्ण बड़े आराम से चुपचाप वहां से चले गए, तो सारे घबरा गए बेचारे। तो इस तरह भगवान जो है जानते हैं कि कब क्या निर्णय लेना चाहिए, और बड़ी दक्षता से कार्य करते हैं। जिस तरह से उद्धव जी को बता रहे हैं कि शरद पूर्णिमा का समय आ रहा है और ये उत्तम समय है वृंदावन में रास करने का, कि मैं वहां जा रहा हूं। तो भक्तों को भी बहुत कुशल होना चाहिए निर्णय लेने में, है ना, जिस तरह से भगवान है कि कब क्या करना है, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रचार के समय प्रचार करना है और अध्ययन के समय अध्ययन करना है, और क्या नहीं करना चाहिए, प्रज्वलपान नहीं करना चाहिए, इस सब का निर्णय लेना होगा, है ना। और काल के अनुसार परिस्थिति के अनुसार प्रचार कैसे करना है, ये भी कुशलता है। आज के समय में इस सब आडंबरों की आवश्यकता है, ये आडंबर नहीं तो क्या। भजन करने के लिए तो क्या चाहिए, माला चाहिए, पाठ करने के लिए ग्रंथ चाहिए, और कथा करने के लिए कथावाचक चाहिए और कुछ लोग चाहिए, ये सब क्या है। लेकिन समय परिस्थिति और काल के अनुसार ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है। जैसे प्रभुपाद कितने कुशल थे, है ना, प्रभुपाद ने कहा कि मायापुर में प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो पेड़ के नीचे भी रह सकता हूं, लेकिन कौन आएगा सुनने के लिए, कलयुग में कोई नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं ताकि लोग आकर्षण से, क्योंकि प्रभुपाद ने कि कलयुग में लोग बड़ी बड़ी इमारतों से आकर्षित होते हैं, ये कलयुग का लक्षण है। ऐसे बड़े बड़े इमारतें कि वो इतनी बड़ी इमारत है, क्या बात है, अंदर कुछ भी हो, खोखलापन हो, लेकिन बाहर सिर्फ इमारत को देखकर लोग घुस जाते हैं अंदर, है ना। कितना भी बोगस फिलॉसफी लोग दे रहे हो, केवल इमारत की सुंदरता को देख के लोग घुस जाते हैं, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स को देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद ने भी बड़ी कुशलता से इस प्रकार देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया कि किस तरह से प्रचार करना चाहिए, क्रांतिकारी प्रचार जो कभी भी किसी ने नहीं किया। जैसे श्रील भक्तिनोद ठाकुर सबसे पहले आचार्य थे जिन्होंने ट्रेन में चढ़ के गए, या फिर कह सकते हैं बैलगाड़ी में, क्योंकि एक ऐसा समय था जब सन्यासी लोग, यहां तक कि शंकराचार्य के संप्रदाय के सन्यासी कई हुए हैं, आज हैं ऐसा पता नहीं, लेकिन पहले हुए हैं, जो कभी भी किसी गाड़ी में नहीं चढ़ते, हमेशा पैदल जाते थे, पूरे भारत में वो चलकर ही जाते थे जहां भी उनको जाना होता था। लेकिन वैशा आचार्य जब आए, खासकर श्रील भक्तिनोद ठाकुर आए, उन्होंने ट्रेन में जाना शुरू किया। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले आचार्य हैं जो पहली बार गाड़ी में वृंदावन गए, कार में, ब्रिटिश कार। उस जमाने की गाड़ी में फोटो भी है, भक्ति सिद्धांत महाराज उस गाड़ी के पास खड़े हैं और वृंदावन में, और वहां के जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि ये सब क्या है, आप सन्यासी हैं गाड़ी में आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं आप सबको युक्त वैराग्य सिखाने आया हूं कि ये सब भगवान की सेवा, ये भी लगाया जा सकता है, है ना, ये असली सन्यास है। तो इस तरह प्रभुपाद को हम देखते हैं, उन्होंने हवाई जहाज को सेवा में लगाया, है ना। प्रभुपाद यानी कि बहुत उच्च कोटि के क्रांतिकारी प्रचारक थे जिन्होंने पूरे विश्व स्तर में ऐसी कुशलता से सब लोगों को लगाया भगवान की सेवा में कि हर परिस्थिति में हर काल में कोई भी भगवान की सेवा कर सके। इसलिए प्रभुपाद ने इतनी सुविधाएं प्रदान कर दी कि किसी भी मनुष्य को चार जो आवश्यकताएं होती हैं, बेसिक आवश्यकताएं, उसकी चिंता ना करना पड़े, खाने सोने की कोई चिंता ना हो, ऐसे प्रभुपाद ने व्यवस्था कर दी कि आपको केवल भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना बस। लेकिन ये जो आचार्य थे इन्होंने तो भक्ति के आंदोलन की स्थापना करनी थी और हमें तो केवल भक्ति करना है, लेकिन और इन्होंने आंदोलन की स्थापना करने के लिए कितनी कुशलता से हर सुविधा का उपयोग किया। इसे प्रभुपाद ने भारत में कहा, विशेष रूप से कहा प्रभुपाद ने कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हमें करना है। लेकिन विदेशों में प्रभुपाद ने इतने बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण पर जोर नहीं दिया। प्रभुपाद ने विदेशों में ग्रंथों के वितरण पर ज्यादा जोर दिया, भारत में भी दिया लेकिन विदेशों में ज्यादा। और इस तरह देखते हैं कि प्रभुपाद बहुत एक्सपर्ट थे, और इसी कारण से प्रभुपाद ने जुहू में इतने बड़े मंदिर का निर्माण करवाया और हमारे भारत ने या दिल्ली में इतने बड़े मंदिर का निर्माण कराया है ना। तो ये कुशलता है, एक्सपर्टीज है, निर्णय लेना, समय परिस्थिति और काल के अनुसार आचार्य लोग जानते हैं कि कैसे सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाए, ये कुशलता है। जैसे प्रभुपाद की कुशलता क्या है, प्रभुपाद ने जब कहा अपने शिष्यों को दीक्षा के समय आपको 64 माला करनी होगी, सब घबरा गए, उनको 64 माला बोलेंगे तो पूरे दिन तो हम लोग बाहर रहते हैं, 8-9 घंटे तो इसी में निकल जाएंगे, तो फिर हम बाहर कब जाएंगे, जॉब कब करेंगे, ये कब करेंगे, वो कब करेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, वेस्ट के लिए आप लोग 32 माला कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा 32 माला, उसमें भी बड़े दुखी हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है 25 माला, तो 25 माला के लिए भी वो लोग तैयार नहीं हुए। प्रभुपाद ने कहा ठीक है 16 माला, रॉक बॉटम, इससे नीचे नहीं। तो प्रभुपाद ने जल्दी फैसला कर लिया। यह भी प्रसंग आता है, किसी ने बताया था अभी कुछ दिनों पहले, कि प्रभुपाद ने यह भी बताया कि प्रभुपाद से पूछा जब ये 16 माला जब जो आपने निर्णय लिया है ये शास्त्रों में दिया है, प्रभुपाद ने कहा नहीं शास्त्रों में नहीं दिया है, शास्त्रों में दिया है संख्या पूर्वक नाम गाण नति भी, कि संख्या पूर्वक नाम लेना चाहिए, और लेकिन ये जो 16 माला की संख्या है मैंने लागू की है। प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद ने कहा कि मैंने ये 16 माला करने के लिए कहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम ये भक्त लोग कम से कम 16 माला तो करें, इस कारण से हमने 16 माला प्रिस्क्राइब किया। और एक अन्य स्थान में प्रभुपाद ने यह भी कहा कि आई चेक विद कृष्णा एंड ही इज एग्रीड। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने कृष्ण से चेक किया 16 माला ठीक है क्या, तो उन्होंने कहा ठीक है 16 माला ठीक है। क्योंकि महाप्रभु ने क्या बोला, मैं तो वहां जाता हूं किनके घरों में, जो लखपति हैं 1,00,000 नाम लेते हैं। तो एक दिन हमारे महाराज से किसी ने पूछा था कि महाराज गौड़िया मठ में तो वो 64 माला करते हैं, कुछ गौड़िया मठ में तो हम तो 16 माला करते हैं। तो महाराज ने एकदम उत्तर दिया कुशलतापूर्वक, क्या उत्तर दिया, उन्होंने क्या बोला कि जो 8 घंटे सेवा करते हैं और 16 माला अगर आप जब करोगे तो 64 माला के बराबर। तो इस प्रकार आचार्य लोग जानते हैं कि कब किस परिस्थिति में क्या नियमों का पालन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भविष्य में 4 नियम नहीं रहेंगे, 3 नियम ही रहेंगे और हमें 16 माला नहीं करना पड़ेगा, 8 माला में चल जाएगा काम, है ना। तो इस तरह से भी नहीं सोचना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मतलब ये क्रांतिकारी जो परिवर्तन है ये इस प्रकार के जो आचार्य आते हैं जो महापुरुष के आने के बाद आते हैं महापुरुष के मनोभीष्ट को पूरा करने के लिए, उनके द्वारा यह होता है कि हर व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर सकता है इस तरह से, नहीं तो संप्रदाय बंद हो जाएगा फिर हमारा। और आगे क्या बता रहे हैं, शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार देखने वाला जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों के अनुसार कार्य करता है वह शास्त्र चक्षु कहलाता है। शास्त्र चक्षु का अर्थ है जो प्रमाणिक शास्त्रों की आंखों से देखता है। वस्तुतः किसी भी ज्ञानी तथा अनुभवी व्यक्ति को इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हर वस्तु को देखना चाहिए। इसे प्रभुपाद कहते थे जो शास्त्रों को कोट नहीं करते हैं वो कौन है, चीटर है ना। शास्त्रों के आधार पर जो प्रचार नहीं करते हैं, जो शास्त्रों से ही कृष्ण को हटा देते हैं, भगवद्गीता से ही कृष्ण को हटा देते हैं, इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या बोलते हैं कि मैं ग्रंथों का संपादन नहीं करता। वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं मैं किताबों का पुस्तकों का संपादन नहीं करता, मैं पुस्तकों की प्रूफ रीडिंग नहीं करता हूं, मैं प्रूफ रीड करता हूं ऑथर को। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि मैं ऑथर को प्रूफ रीड करता हूं, सबसे पहले देखता हूं कि किसने किताब लिखी है, उसके बाद ही मैं किताब खोलता हूं, क्योंकि अगर वो व्यक्ति परंपरा में नहीं है तो किताब खोलने का समय क्यों बेकार करें, है ना। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए जो कि गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है, शास्त्रों के चक्षु से देखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ग्रंथों के अध्ययन पर इतना जोर देते थे। रिलीजन विदाउट फिलॉसफी सेंटिमेंटलिज्म एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज सिंपली फैनेटिज्म, मेंटल स्पेकुलेशन। फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो हमारा जो अभ्यास है वो भावुकता के आधार पर नहीं होना चाहिए, शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। जो भी हम कहते हैं, जो भी हम व्यवहारिक सेवा करते हैं, उसका आधार शास्त्र होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र जो है शब्द प्रमाण है, भगवान की वाणी है, और उस आधार पर जो गुरु साधु कार्य करते हैं ऐसे कार्य में हमें सफलता मिलेगी। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जितनी अधिक भाषाओं में इन ग्रंथों को छापा जा सके छापो। इसलिए हम देखते हैं कि विश्व के लगभग सारी भाषाओं में इन ग्रंथों की छपाई हो चुकी है, ग्रंथों को छापा जा रहा है, और यहाँ तक कि अभी हमने बताया था पिछली बार भी कि चाइनीज गवर्नमेंट ने भी चाइनीज भाषा में भगवद्गीता को रिलीज किया, ऑफिशियली रिलीज किया है, और मंगोलिया जैसे देश में भी, छोटे से देश में मंगोलियन भाषा में भगवद्गीता उपलब्ध है। तो शास्त्र चक्षु प्रभुपाद जी के ग्रंथों ने आज पूरे विश्वभर में कितने लोगों को भक्त बनाया है। आज भी प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर लोग भक्त बन रहे हैं। रथ यात्रा में किसी ने किसी को किताब दी और पढ़कर वो यहाँ पर भक्त बन गया, उसने पढ़ना शुरू किया, माला भी शुरू कर दी और वो आ गया। एक बार एक इटली में एक भक्त था, उसने चैतन्य चरितमानस में सबसे पहले पढ़ा था, उसको कोई भक्त दे गया था, और उसमें उसने जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में पढ़ा था, उसको लगा कोई ऐसी कथा होगी काल्पनिक। लेकिन एक समय उन्हीं के शहर में पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा हुई और उनको पता चला कि कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, तो देखने के लिए जब गए तो सामने जब रथ को देखा, जो वर्णन उन्होंने पढ़ा था चैतन्य चरितमानस में, और देखा कि बिल्कुल वही रथ सामने खड़ा हुआ है, तो वो पागल सा हो गया व्यक्ति, इतना भावना में आ गया कि बाद में घंटों घंटों तक वो कीर्तन करने लगा, नृत्य करने लगा रथ यात्रा के दौरान, और उसी यात्रा के दौरान वो भक्त बन गया। तो इस तरह से कई उदाहरण हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथों को जो पढ़कर भक्त बन जाते हैं। अपनी कौरी आंखों से सूर्यमंडल को देदीप्यमान वस्तु मात्र के रूप में देखते हैं, किंतु जब हमें विज्ञान के किसी प्रमाणिक ग्रंथ या अन्य साहित्य के माध्यम से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सूर्यमंडल पृथ्वी से कितना बड़ा है और कितना शक्तिशाली है। यानी कि शास्त्रों के आधार पर, जैसे प्रभुपाद ने किताब लिखी इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, क्योंकि आप लोगों का जो जर्नी है वो इजी नहीं है, आप लोगों ने करोड़ों रुपया खर्च किया है और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो और मिट्टी लेके आ रहे हो। तो प्रभुपाद ने इस्कॉन से पहले किताब लिखी इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अगर आपको जाना ही है और प्लैनेट्स में तो हम आपको रास्ता बताते हैं, शास्त्रों में दिया हुआ है, है ना। अभी क्या बोल रहे हैं कि हम चंद्रमा में क्या बनाएंगे, क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगे, वहां क्रिकेट क्या क्रिकेट मैच होगा। कितनी बड़ी मूर्खता है बताइए, लोगों को बेवकूफ बनाने की हद होती है, और लोग ऐसे लोग जो है बेवकूफ बनते भी हैं और नक्षत्रों को देखकर बोलते हैं ये तारा तुम्हारे लिए $1,00,000, ये तारा तुम्हारे लिए $1,00,000, ये तारा तुम्हारे लिए $1,00,000, और आखिर में कुछ भी नहीं बचा है ना, सब बिक गए, सारे तारे बिक गए। कितनी बड़ी मतलब कितना बड़ा धोखा है, है ना, और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि रावण ने भी प्रयास किया स्वर्गलोक जाने का, नहीं जा पाए, और आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक भी ऐसे कर रहे हैं, है ना, कितना बड़ा बेवकूफ बना रहे हैं। रेगिस्तान में शूटिंग किया, करोड़ों रुपया खर्च किया, और लोग अमेरिकन सोचने लगे कि हाँ चांद में गए, और आप सब अमेरिकन प्रार्थना करें जहां भी हैं कि हम सब सुरक्षित वापस लौट सके, आप सब प्रार्थना करें, तो सब प्रार्थना भी कर रहे थे चर्च में जब ये मून में लैंड किए थे एस्ट्रोनॉट्स, वो पता है ना कि पूरे अमेरिका में प्रेयर चल रहा था, सारे चर्च खुले हुए थे और सारे अमेरिकन प्रे कर रहे थे कि जो एस्ट्रोनॉट्स गए हैं वो सफलतापूर्वक वापस लौट सकें। उनको क्या पता था कि कहाँ वहीं पर पृथ्वी में के रेगिस्तान में शूटिंग चल रही है। कितना बड़ा धोखा है, देखिए कितना बड़ा धोखा है। शास्त्र के चक्षु से नहीं देखेंगे तो पूरा समाज हमें बेवकूफी बनाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, अंधा यथा अंधे रोपनीय मानस। ये सब राजा लोग अंधे हैं और उनके सब जो फॉलोअर्स भी अंधे हैं, सब गड्ढे में गिरेंगे एक साथ, सब नरक में जाएंगे एक साथ, है ना। और कई ऐसे हैं जो पहले तो समाज सेवा करते थे, आयुर्वेद का बिजनेस करते थे, फिर कथावाचक बने, कथावाचक बनने के बाद गुरु बन गए और आखिर में भगवान भी बनने लगे। ये प्रोसीजर है भगवान बनने का प्रोसीजर। कोई भगवान बनना चाहता है तो आपको सबसे पहले समाज सेवा करना होगा। समाज सेवा करने के बाद कुछ सालों के बाद आप भागवत के ऊपर कथा करिए, भागवत सप्ताह करिए, और भागवत सप्ताह करते करते जब आपका पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, लाखों की संख्या में लोग आएंगे आपके कार्यक्रम में, तो एक दिन आप जन्माष्टमी के दिन घोषणा करें कि आप ही भगवान हैं, है ना। तो इतना बेवकूफ बनाया जाता है, और हमारी निर्दोष जनता जो खासकर भारत में है, अधिकांश लोग यहाँ पर सामान्य जो जनता है वो भावुकता में ही अपना जीवन बताते हैं, आध्यात्मिक जीवन सो कॉल्ड, है ना। तो ऐसे कथावाचकों से सुनते हैं और वो भी मान जाते हैं, हाँ हाँ देखिए हमारे गुरुदेव तो भगवान है ना। और ऐसे कार्यक्रम में भगवान का चित्र नजर ही नहीं आएगा और सबको गुरु का ही चित्र बांटा जाता है ना। बहुत बड़ी विडंबना है ना। और होलसेल में दीक्षा होती है, थोक में। बोलते हैं हमारे पास सब प्रकार के मंत्र हैं, जिसको जो मंत्र चाहिए वो ले सकते हैं हमसे, यही से मंत्र दे देंगे, इशारा कर देते हैं हाथ से, दीक्षा हो गई आपकी। लेकिन पांच रात्रि की विधि के अनुसार देखा जाए तो इन किसी की भी दीक्षा नहीं हुई, क्योंकि ऐसे लोग गुरु और शिष्य दोनों ही नरक जाएंगे। उनके लिए पूरी व्यवस्था की है यमराज जी ने, धोखा देने वालों को और धोखा जो खा रहे हैं दोनों एक साथ ही जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। तो मनुष्य जीवन जो है ये कोई साधारण जीवन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। हा? अच्छा आपको पता नहीं था, आपके आंखें नहीं है कान नहीं है सुनने के लिए, क्यों बोला वेदांत सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन में जिज्ञासा करनी पड़ेगी आपको कि कौन वास्तव में गुरु है, कौन भगवान है, जानने का प्रयास करो। और किसी के चक्कर में फंस गए, ये बापू वो बापू ये भगवान, सब बेवकूफ बना रहे हैं समाज में लोग, क्योंकि इनका आधार शास्त्र है ही नहीं, शास्त्र है ही नहीं। तो यहां पर बड़ा अच्छा बताया, आगे देखिए क्या बता रहे हैं। इस तरह यद्यपि कृष्ण भगवान है और भूत वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते हैं, किंतु लोगों को शिक्षा देने के लिए वे सदैव शास्त्रों का उल्लेख करते थे। भगवान कृष्ण भी श्लोक मतलब शास्त्रों का उल्लेख करते थे, बता रहे हैं। और यहां तक कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े आचार्य श्रील प्रभुपाल, वर्तमान वैष्णव और पूर्ववर्ती आचार्य, और स्वयं भक्ति रसाम सिंधु के रचयिता श्रील रूप गोस्वामी, आप देखेंगे इस ग्रंथ को उठा के, ये ग्रंथ लाया नहीं मैं, आप भक्ति रसाम सिंधु आप देखेंगे, लगभग हर पेज में आप देखेंगे भक्ति रसाम सिंधु के श्रील रूप गोस्वामी ने किसी ना किसी शास्त्रों से उदाहरण दिया है अपनी बात को साबित करने के लिए। कि रूप गोस्वामी कुछ भी बोले वो अपने आप में शास्त्र है, क्योंकि भगवान के नित्य परिकर हैं, वो शास्त्र से अलग बात कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो शास्त्रों के आधार पर ही बोलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को आचार्य कहा जाता है जो आचरण के द्वारा साबित करते हैं। जिस तरह से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान होने के बावजूद भी उन्होंने जब व्याख्या की, वेदांत सूत्र की व्याख्या की प्रकाशानंद सरस्वती के सामने और या सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने, तो सब शास्त्रों से ही उदाहरण दिया उन्होंने। कोई भी उन्होंने ऐसे बात नहीं कि मैं तो महाप्रभु हूं, है ना, मैं तो स्वयं कृष्ण हूं, मैं जो भी कुछ बोलूं वही शास्त्र, ऐसा नहीं कहा महाप्रभु ने। महाप्रभु तो भक्त रूप में आए थे और इस भक्त रूप में आने के कारण महाप्रभु दिखा रहे थे कि वास्तव में वो भावुकता से कारण कीर्तन कीर्तन नृत्य कीर्तन नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि प्रकाशानंद सरस्वती ने यही कहा कि आप तो सन्यासी हैं और हमारे संप्रदाय के हैं, क्या आप भावुकता से नृत्य कीर्तन कर रहे हैं आप बनारस के सड़कों में, आपको तो वेदांत दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब क्या बताएं, जब मैं अपने गुरु से मिला था, उन्होंने मुझे दीक्षा दी थी, तो मैंने उनसे ये बोला कि वाह मंत्रा दिला गुसाई कि वाह तार बल जपीते जपीते खुरीला पागल, आपने जो पागल बना दिया, ये कैसा मंत्र दे दिया आपने। और उन्होंने ये भी कहा मुझे कि तुम मूर्ख हो, तुम क्या जानो वेदांत सूत्र का अर्थ क्या है, अच्छा तुम्हारे लिए ये है कि तुम केवल हरि नाम लो। और उन्होंने आप जानते हैं बृहन्नारद पुराण से भी उदाहरण दिया, हरे नाम हरे नामे व केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जब से बात सुनी तो प्रकाशन सबसे जानते थे कि ये चैतन्य महाप्रभु कोई ऐसी भावुक नहीं है, ये बहुत बड़े विद्वान है। तब उन्होंने उनको बोला कि आप और आगे बताएं, तो फिर सबसे पहले उन्होंने मायावाद दर्शन का खंडन किया और बताया कि मायावाद दर्शन है क्या वास्तव में, वो दर्शन ही नहीं है। और उसके बाद फिर उन्होंने वैश्य सिद्धांत प्रस्तुत किया और सारे के सारे 10,000 सन्यासी जो हैं, जो बनारस के 10,000 सन्यासी थे प्रकाशानंद सरस्वती के साथ बनारस की सड़कों में क्या कर रहे थे, वो सभी संकीर्तन में चले गए और सब लोगों ने जोर से उच्च स्वर में उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उदाहरण याद, यद्यपि भगवदगीता में कृष्ण सर्वोच्च अधिकारी के रूप में प्रवचन कर रहे थे, तो भी वे वेदांत सूत्र को प्रमाण के रूप में उल्लिखित एवं उद्धृत कर रहे थे। श्रीमद् भागवत में एक कथन है जिसमें एक व्यक्ति व्यंग्य पूर्वक कहता है कि कंस के शत्रु कृष्ण को शास्त्र शत्रु कहा जाता है, किंतु अपनी प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए वे गोपियों को ही देखने में लगे हुए हैं, जिससे गोपियां मदांत हो चली हैं। आप सुन रहे हैं बात को, दोबारा सुनिए। श्रीमद् भागवत में एक कथन है जिसमें एक व्यक्ति व्यंग पूर्वक कहता है कि कंस के शत्रु कृष्ण को तो शास्त्र चक्षु कहा जाता है, लेकिन ये चक्षु से तो हमेशा वो गोपियों को ही देखते रहते हैं, किंतु अपनी प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए वे गोपियों को ही देखने में लगे हुए हैं, जिससे गोपियां मदांत हो चली हैं। और आखिरी एक और पढ़ देते हैं। पवित्र, परम पवित्रता दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार की पवित्रता होने पर मनुष्य किसी पापी का उद्धार कर सकता है। दूसरी प्रकार की पवित्रता होने पर वह कोई ऐसा काम नहीं करता जो अपवित्र हो। जिस व्यक्ति में इन दोनों गुणों में से कोई एक गुण होता है वह परम पवित्र कहलाता है। कृष्ण दोनों हैं, वह सभी पापी बदात्माओं का उद्धार कर सकते हैं और साथ ही कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे वह दूषित हो सके। जिस तरह से महाभारत के युद्ध में यह था कि जो भी शरीर छोड़ता था महाभारत के युद्ध में, उसको क्या होता था, किसी का किसका दर्शन होता था, भगवान कृष्ण का दर्शन होता था। गरुड़ जी में बैठे हैं भगवान कृष्ण और मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा देखते हुए शरीर छोड़ रहे थे महाभारत में। इस तरह से 18 दिन के भीतर भगवान श्री कृष्ण ने 64 करोड़ जो सैनिक थे वो एकत्रित किया उनको और उनका उद्धार किया। ये उनकी व्यवस्था थी। तो प्रभुपाद कहते हैं एक जगह पर कि भगवान कृष्ण ने 18 दिनों में इतने करोड़ों सैनिकों को एकत्रित किया, उनका उद्धार किया, और हमने ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है। अगले 10,000 साल के लिए हम भी एकत्रित करना चाहते हैं उन असंख्य लोगों को, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए। इस तरह से प्रभुपाल बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने तो 18 दिन के लिए व्यवस्था की थी। प्रभुपाल कहते हैं हमने व्यवस्था की है कि 10,000 साल तक वही भगवदगीता का संदेश जो है पूरे जनमानस को प्राप्त हो। तो कितने लोगों का उद्धार होगा, सोच के देखिए आप। तो ये पवित्रता है, ये शक्ति है महाभागवत की। महाभागवत वो व्यक्ति है जो चलने मात्र से ही, दर्शन देने मात्र से ही लोगों को पवित्र करता है, सुकृति प्रदान करता है। तो एक बार किसी शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद हम कितने भाग्यवान हैं, है ना, कि हमें आपकी कृपा मिली, मतलब कृष्ण की कृपा मिली हमें। तो प्रभुपाद ने कहा कि भाग्यवान मैंने आपको बनाया है, आप भाग्यवान नहीं थे, प्रभुपाद ने कहा यह सुकृति मैंने दी है, है ना। तो प्रभुपाद उन लोगों को भी सुकृति दिए जिनको बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धाविहीन थे। जैसे कि हम एक नाम अपराध पढ़ते हैं कि श्रद्धाविहीन व्यक्तियों को, जो श्रद्धा नहीं है जिनकी, जिस नाहरी नाम में उनको नाम की महिमा बताएंगे तो क्या लगेगा, नाम अपराध लगेगा। अश्रद्धालु को नाम की महिमा बताना नाम अपराध है, लेकिन ये जो नियम है मां भागवतों के ऊपर लागू नहीं होता, ऐसा भक्तिनाथ ठाकुर जय धर्म में लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महाभागवत क्या करते हैं, और श्रद्धालु में श्रद्धा पैदा कर देते हैं और उनको नाम की महिमा सुनाते हैं। ये शक्ति महाभागवतों में होती है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए वर्जित है। यहां तक कि मध्यम अधिकारी के लिए वर्जित है, क्योंकि मध्यम अधिकारी को भेद करना पड़ता है कि कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है, और प्राकृत भक्तों के लिए तो मतलब ही नहीं है कुछ। लेकिन जो महाभागवत है वह श्रद्धालु के हृदय में भी श्रद्धा जागृत कर देते हैं और उनको भी नाम की महिमा सुनाते हैं। तो ये पवित्रता, ये शक्ति शिला प्रभुपाद में थी, जिनके हृदय में आवेश था, नित्यानंद प्रभु का आवेश, महाप्रभु का आवेश, और ये आवेश लेकर शिला प्रभुपाद पूरे विश्व भर में गए और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, और अपने ही संघ के द्वारा और अपने दर्शन मात्र से ही प्रभुपाद ने जिस स्थान में कदम रखा उस स्थान क्या बन गया, तीर्थ स्थान बन गया। जिस तरह से भगवान जहां जहां गए उस स्थान को क्या बोला जाता है, धाम कहा जाता है, इसी तरह से जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान को अपने हृदय में लेकर जाते हैं और जहां जहां ऐसे शुद्ध भक्त अपने कदम रखते हैं, ऐसा स्थान क्या बन जाता है, तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, है ना। ये किसने बोला था, युधिष्ठिर महाराज ने बोला था विदुर जी को देखते हुए। विदुर जी जब वापस आए थे तीर्थाटन करके, तो उन्होंने उनकी प्रशंसा की कि जहां जहां आप जाते हैं आप तो तीर्थ स्थानों को भी पवित्र करते हैं, और दूसरा अर्थ क्या है, जहां जहां आप कदम रखते हैं उन स्थानों को भी आप तीर्थ स्थान बना देते हैं। जैसे कि गढ़ी, ये स्थान जहां पे लोग शौच करने आते थे, शौच क्रिया के लिए आते थे, लेकिन क्या किया प्रभुपाद जी के एक अग्रणी शिष्य ने, क्या किया इसी स्थान को धाम बना दिया, राधा पार्षदी के लिए एक स्थान बना दिया, इतना बड़ा स्थान बना दिया। क्योंकि ये कैसे संभव है, ये तभी संभव है जब ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय में स्वयं भगवान विराजमान हो, तभी इतना बड़ा कार्य हो सकता है, अन्यथा यह संभव ही नहीं है। है ना, कि ऐसे देशों में जहां पर लोग मलेच्छ चंडाल और यावन, इनको बदलना असंभव कार्य है, असंभव है। प्रभुपाद के गुरु भाई उन्होंने बताया था एक बार कि जो प्रभुपाद ने कार्य किया है वो शुद्ध भक्त भी नहीं कर सकते हैं, ये तो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो साक्तावेश है, जिसको विशेष शक्ति मिली है श्री चैतन्य महाप्रभु से। इसलिए चैतन्य प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद क्या कारण है कि महाप्रभु दक्षिण भारत से बाहर नहीं गए प्रचार करने के लिए, विदेशों में नहीं गए। प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया उसी समय, प्रभुपाद ने कहा क्योंकि महाप्रभु मुझे भेजना चाहते थे। प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे महाप्रभु श्रेय देना चाहते थे, इसी कारण से मैं गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पवित्रता, परम पवित्र कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, है ना। जिस तरह से सूर्य के संसर्ग में मल मूत्र भी शुद्ध हो जाता है जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य इतना पवित्र होता है, इस तरह से भगवान का सुदर्शन करने से ही हम पवित्र होते हैं। जितना अधिक हम भगवान का दर्शन करेंगे, हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी, हमारे नेत्र शुद्ध होंगे, हमारे हृदय से काम वासना अनर्थ दूर होंगे, इसलिए निरंतर भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो इस कारण से क्या होगा कि हम लोग पवित्र होंगे, और जितने अधिक हम पवित्र होंगे उतना हम लोग पाप कार्यों से भी बचेंगे। तो जो भगवान का निरंतर हरिनाम, निरंतर नाम लेता है, निरंतर दर्शन करता है, उसे कितनी पवित्रता आती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाश्रम के पहले श्लोक में क्या बोला, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रैया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। आत्मा का स्नान कराती है ये संकीर्तन, इसकी परम विजय हो, चित्त के दर्पण का मार्जन करती है। क्योंकि क्या है कि हम लोग दवाग्नि में फंसे हुए हैं और इसके कारण बहुत गर्मी है, झुलस रहे हैं, और ऐसी दवाग्नि में अचानक चंद्रमा की किरणें आपके ऊपर पड़े तो कैसा लगेगा। तो संकीर्तन की तुलना चंद्रमा की किरणों से की गई है। तो संकीर्तन में भाग जो लेते हैं उनको दवाग्नि से छुटकारा मिलता है। तो ये नाम हमें पवित्र करने वाला है, नाम हमको शुद्ध करने वाला है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ना ही हमें शुद्ध करेगा, बल्कि नाम इतना शुद्ध करेगा कि स्वयं नामी ही आकर हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, आप शुद्ध करेंगे सबको। जब नामी आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर जहां जहां आप जाएंगे वो स्थान शुद्ध होता जाएगा, वो स्थान भी धाम बन जाएगा। तो ये यहां पर बताया गया है। इस संदर्भ में विदुर ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को पारिवारिक संबंधों के विरक्त कराने के प्रयास में कहा था, हे बंधु, आप सर्वप्रथम अपने मन को उन कृष्ण के चरणारविंद में स्थिर करें, जिनकी पूजा बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा सुंदर विद्वत्तापूर्ण छंदों में की जाती है। कृष्ण समस्त उद्धारकों में सर्वोपरि है, निस्संदेह शिव तथा ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता है, किंतु उद्धारक के रूप में उनका पद कृष्ण की कृपा पर निर्भर करता है। अतएव विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को एकमात्र कृष्ण में चित्त स्थिर करने और उनकी पूजा करने की सलाह दी। यदि कोई कृष्ण के नाम का ही कीर्तन करे तो यह पवित्र नाम उसके हृदय में प्रखर सूर्य की भांति उदित होगा और सारे ज्ञान रूपी अंधकार को भगा देगा। इसलिए विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि वह सदैव कृष्ण का चिंतन करें, जिससे पाप कर्मों की कलमश राशि तुरंत धुल जाए। भगवद गीता में भी अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम कहा है। कृष्ण की चरम पवित्रता प्रदर्शित करने वाले अनेक दृष्टांत हैं। जैसे कि पीछे भी हमें किसी ने बताया था, शायद आप ही ने बताया था, कि एक भक्त जो है जब उसने हरि नाम लेना शुरू किया, उससे पहले काफी जो है उसने क्रिमिनल कार्य किए थे, क्राइम किए थे, बहुत बड़े बड़े क्राइम किए थे उसने। लेकिन बाद में जब वो मंदिर में आया और मंदिर में उसने भक्तों को बताया कि मैंने कितने लोगों की हत्या की, वो हरिनाम ले रहा था, लेकिन हरिनाम लेते लेते वो इतना शुद्ध हो गया और वो चार नियमों का पालन बड़े सख्ती से करने लगा। बाद में खुद ही जाकर उसने, भक्तों ने कहा कि आप जाओ और अपने आप को कन्फेस करो कि आपने ये सब किया है। तो उसने जाके खुद जाके पुलिस स्टेशन में अपने आप को सबमिट किया कि मैंने ये सब पाप किया, मैंने इतने लोगों की हत्या मैंने की है करके। तो जब कोर्ट में बुलाया, जज ने पूछा कि ये सब किया है और अब क्या कर रहे हो, इतने दिन कहां पे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं अब हरि नाम लेता हूं और इन चार नियमों का पालन करता हूं। ये चार नियम क्या है कि मैं मांस भक्षण नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता हूं, जुआ नहीं खेलता हूं, है ना, और क्या नहीं करता हूं, और क्या, चौथा क्या है, और नशा नहीं करता हूं। तो ये चार नियमों का मैं पालन करता हूं। तो जज हैरान हो गया, अरे तुम तो वैसे ही कैदखाने में हो, जो ये बोलते ये कौन से नियम है, कहां पर रहते हो तुम, मेरे ख्याल से जहां तुम रह रहे हो वो बहुत ही सही स्थान है, यही तुम्हारी असली सजा है कि जीवन पर तुम इसी जगह पर रहो। क्योंकि बाहर जो है अगर कोई चार नियमों का पालन कर रहा है तो लोग पागल ही सोचेंगे, है ना, क्योंकि इन चार जो पाप है उनको पाप नहीं माना जाता है। तो इसलिए जज ने फैसला क्या दिया कि आप पूरे जीवन भर ये सजा काटो, उम्र कैद आपको, कि आप पूरे दिन आप साधनों के साथ जुड़े रहो, देखिए भक्त कैसे मुक्त हो गया सभी पापों से, है ना। इस तरह से देखते हैं कि हरि नाम जो कितना शुद्ध करने वाला है, ये व्यवहारिक उदाहरण है कि कैसे पापी से पापी लोग भी जो है पवित्र हो गए और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। और सबसे ज्वलंत उदाहरण कौन है, श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा में, जिन्होंने कितने पाप किए, यमदूत भी आ गए लेकिन क्योंकि अपने पुत्र को पुकारा, नारायण को पुकारा, सबसे आखिरी पुत्र को पुकारा, छोटे बालक को बुलाया, नारायण कहां हो, यमदूतों को देखकर डर गए, तो विश्वदूत भी आ गए। और उसके बाद फिर कैसे, किस राह से, विश्वदूतों की कृपा से अजामिल को छुटकारा मिला और अधिक 12 साल मिल गया उसी शरीर में। और हरिद्वार जाकर उन्होंने क्या किया, भजन किया और फिर शुद्ध नाम लेकर वो वैकुंठ धाम चले गए। तो इस प्रकार से बहुत सारी कथाएं हैं, है ना, बहुत सारे दृष्टांत हैं। तो इससे हम पता चलता है कि भगवत कृपा से ही हम लोग पवित्र हो सकते हैं, और कोई साधन नहीं है इन पापों से छुटकारा पाने का, है ना, कर्म बंधन से छुटकारा पाने का और कोई भी साधन नहीं है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदवादी पुरुषम तम भजामि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से ही आप कर्म बंधन से छुटकारा पा सकते हैं, इन पाप और पुण्य से छुटकारा पा सकते हैं, और कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा भक्ति में लगे रहना चाहिए, और ऐसा करने से ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाए, है ना। जैसे भगवान गीता में क्या बता रहे हैं, ये शाम तो अंतगतम पापाम जनानाम पुण्य कर्मणा सद्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़व्रत होकर कौन भजन कर पाता है, जिसके समस्त पाप कट चुके हैं, है ना। या दूसरा अर्थ ये भी है कि जो हरि नाम ले रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, उनके पाप कट चुके हैं या कट रहे हैं, है ना। तो प्रारब्ध भी कट जाते हैं, भक्ति में इतनी शक्ति है कि ये प्रारब्ध को भी समाप्त करते हैं। जैसे कि भक्ति रसाम सिंधु के प्रारंभ में हमने सुना कि ये क्या करता है, क्लेशाग्नि। शुद्ध भक्ति का पहला लक्षण क्या बताया हमने, क्लेशाग्नि, रिलीफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रेस। तो पाप के कारण भी क्या होता है, हमें क्लेश होता है, कष्ट होता है, तो इस समस्त पाप को खत्म करने वाला है, यहां तक कि प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं। जब हमें शुद्ध नाम का आभास होता है तो प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान की अनंत गुण है, अचिंत गुण स्वरूपम, इसलिए भगवान को कहा गया है, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। तो भगवान के गुण जो है अचिंत हैं, हमारी चिंता से परे हैं, फिर भी ये जब वैष्णव आचार्य लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं तब कुछ हद तक हम लोग समझ पाते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। नहीं तो बताया कि अनंत शेष भी पता नहीं अनंत कोटि समय से लगे हुए हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं लेकिन भी अभी भी उनका गुणगान समाप्त नहीं हुआ है। हम तो केवल 64 गुण ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का, कोई समीक्षा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने शायद कहा, ऐसा लगा ईस्ट के लिए 64 राउंड, सो पहुंचो आप 64 माला में। ये थोड़ा जीवन भर 16 माला ही करोगे आप, ये मिनिमम बोला प्रभुपाद ने, मैक्सिमम नहीं बोला है। ये हमेशा याद रखना, प्रभुपाद ने कहा मिनिमम 16 राउंड्स, मैक्सिमम 16 राउंड नहीं है। तो एक समय ऐसा आना चाहिए जब आप फिजिकली मूव नहीं कर पाएंगे ज्यादा और एक जगह बैठकर आपको भजन करना होगा, तब 64 माला करें आप, और क्या करना है फिर आपने, दिन रात हरिनाम लीजिए अधिक से अधिक, लखपति बनना पड़ेगा, है ना, ठीक है। हरे कृष्णा। भक्ति राम सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण।